हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये भजन गाएंगे। सबको स्क्रीन पर नजर आ रहा है?
गौरांगेरा तोडे पादा जार धन संपदा, गौरांगेरा तोडे पादा जार धन संपदा, से जाने भाका तेरा ससा, से जाने भाका तेरा ससारा, गौरांगे र मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मला गौरांग नाम लाए तार हय प्रेमोदय, गौरांग गुणे तेजुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जाना भाका ते अधिकारी, से जान भक्ति अधिकारी,
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Founder Acharya Jagat Guru Sevita, whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jam Vishnupad Paramhansa Prabhupada Acharya Ashtotroshtra Shishimad, His Divine Grace Bhakti Siddhanta Rasi Goswami Maharaj Prabhupada ki, Anand Koti Vaishnavind ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Galadhar Shivasadi Gaur Bhaktivind ki, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौ निताय की, वृंदे देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, आने वाली गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, All glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। जो हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन गाया उसका अनुवाद श्री गौरांग के चरण युगल ही जिनका धन व संपत्ति हो वही व्यक्ति भक्ति रस का सार जान सकता है। जिसके कानों में गौरांग की मधुर लीलाएं प्रवेश कर गई हों उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जो गौरांग का नाम लेता है उसमें भगवत प्रेम का उदय होता है। मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी जाता हूँ। जो गौरांग का नाम लेता है उसमें भगवत प्रेम का उदय होता है। बोलिए सब गौरांगा। तो रोदन दास ठाकुर कह रहे हैं ऐसे भक्त पे मैं बलिहारी होता हूँ। जो गौरांग के गुणों में रमण करता है उसके अंदर राधा कृष्ण की नित्य लीला का स्फुरण होता है। वही व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है। गौरांग के संगी गणों को नित्य सिद्ध मानने वाले व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाते हैं। श्री गौर मंडल भूमि को जो चिंतामणि के रूप में जानता है वो व्रज भूमि में वास करता है। गौरांग के प्रेम की सागर की तरंगों में जो डूबता है वह राधा कृष्ण का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वह गृह में रहे अथवा वन में यदि वह हां गौरांगा क्या बोलकर पुकारता है तो नरोत्तम दास उसका संग मांगता है। जय हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस गौरांग कथा के दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें गौर पूर्णिमा के उत्सव पर गौर कथा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले आप मैं सब भक्तों का आशीर्वाद चाहूँगा, विशेषकर वराह प्रभु का और सभी भक्तों का। श्रोताओं के उत्साह से ही वक्ता को प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ बोल सके। और चैतन्य महाप्रभु का की जो लीलाएं हैं बहुत उसमें गहराई है। कृष्ण लीला में भगवान अपना ऐश्वर्य भी दिखाते हैं अपना माधुर्य भी दिखाते हैं। गौरांग महाप्रभु की लीला में ऐश्वर्य भी है माधुर्य भी है और औदर्य भी है। औदर्य का मतलब है ओवरफ्लोइंग कंपैशन, जो करुणा है वो निकल रही है बाहर निकल रही है। जैसे एक बोतल में आप शहद डाल रहे हैं वो बोतल पूरी भर गई शहद से फिर भी आप शहद वो बाहर निकल रहा है टपक रहा है बाहर। तो ये गौरांग महाप्रभु हैं, भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में आए यही सिखाने के लिए कि हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अक्सर अच्छा बन गया अक्सर ऐसा ही होता है जैसे हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं एंड उसी मौके पे टेक्नोलॉजी फेल होती है कितनी बार ये देख चुके हैं तो अभी मैंने सोचा अब तो चलेगा ही नहीं, लेकिन बाई चांस चल गया गौरांग महाप्रभु की कृपा से। तो अभी हम गौरांग महाप्रभु की लीलाएं मुख्यतः तीन शास्त्रों में मिलती हैं। सबसे पहले चैतन्य भागवत जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने रचित किया। वृंदावन ठाकुर जी स्वयं व्यासदेव जी हैं। फिर दूसरा है चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने रचित किया। और तीसरा है चैतन्य मंगल जिसको लोचनदास ठाकुर जी ने बनाया। तो हमारी जो चर्चाएं इन तीनों ग्रंथों से होंगी, लेकिन मुख्यतः चैतन्य भागवत से होंगी जिसको किसने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर जी। और महाप्रभु की लीलाओं को तीन भागों में बांटा गया है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। और ये चैतन्य चरितामृत में है, और चैतन्य भागवत में आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। तो आदि खंड में महाप्रभु के संन्यास लेने तक की लीलाएं, महाप्रभु ने जो संन्यास लिया जब तक वो नवद्वीप में रहे उसको आदि खंड कहा गया। तो हम आदि खंड के दो भाग हैं और हम पहले मुख्यतः 8 चैप्टर्स पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे इन 2 दिनों में। बहुत विस्तार में चैतन्य भागवत में इनका वर्णन है, इतने विस्तार में हम नहीं जा पाएंगे जितना समय हमें अलाउ करेगा। आप सब तैयार होके आए ना, रात के 9:30 तक बैठना है सबको तो ठीक है, उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी लीला सुनाते सुनाते श्रोताओं का बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी, हर लीला के पीछे एक श्रुति फल है, और उसमें यही कंडीशन है कि उस लीला को बड़े ध्यान से और भक्ति से सुनना है, ठीक है ना, नींद में नहीं नींद में सुनेंगे तो कुछ 1-2% फल मिलेगा, लेकिन जो पूरे भक्ति से इसको सुनेगा उसको 100% फल मिलेगा। तो हो सकता है आपने वो लीलाएं पहले भी सुनी हो, लेकिन भगवान की लीलाएं तो हमेशा नवीन रहती हैं। और मैं आप यथा योग्य जितने में मेरी क्षमता है आप सबके आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से कहने का प्रयास करूंगा। और क्यों ना हम इस गौर पूर्णिमा को उत्सव के लिए अपनी चेतना को पूर्ण रूप से तैयार करें, क्योंकि जब परसों गौर पूर्णिमा का उत्सव आएगा 2 मार्च को, तो हम पूरे तैयार हों, हम जाने कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। वैसे तो हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, बड़े विशेष अवतार हैं, लेकिन इस कथा से हमारे उनके प्रति रति बढ़ने चाहिए, उनके प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए, और हम इस जीवन अपने जीवन को सिद्ध कर सकें उनकी कृपा को प्राप्त करके। ये पूरा मुख्य उद्देश्य है इस गौर कथा के आयोजन के पीछे। तो वृंदावन दास ठाकुर जी ये 2 अध्याय में इसकी प्रयार दे रहे हैं। आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवान का आविर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ, भगवान का आविर्भाव हुआ, उनकी जन्म कुंडली बनाई गई, और फिर कैसे सच्ची माता के आंगन में उन्हें सुंदर सुंदर लीलाएं करनी शुरू की, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर जी इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत सुंदर प्रयार है ये। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिल चैतन्य कथा भक्ति तभ्याय, सुनिल चैतन्य कथा भक्ति लभ्याय, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिल चैतन्य कथा भक्ति लभ्याय। बहुत सुंदर इसका अर्थ है कि भक्तों की गोष्ठी के सहित गौरांग महाप्रभु की जय जय, जोर से बोलिए जय जय। केवल गौरांग महाप्रभु की जय नहीं, गौरांग महाप्रभु का साथ जितने भक्त हैं, 5 तत्व तो हम जानते ही हैं, साथ में सभी भक्त, सभी पार्षद जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की संकीर्तन लीला में उनका सहयोग दिया और जो अभी भी दे रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जिनका बहुत संकीर्ण मानसिकता है वो केवल गौरांग महाप्रभु की जय बोलेंगे, लेकिन जो उदार हृदय के हैं वो गौरांग महाप्रभु की भी जय बोलेंगे और उनके भक्तों की भी जय बोलेंगे। ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने का सही चेतना है, गौरांग महाप्रभु की जय और उनके भक्तों की भी जय। इस प्रकार से सुनिले चैतन्य कथा, जो चैतन्य कथा को सुनेगा भक्ति लभ्य है, उसको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पहला आपको श्रुति फल बता दिया। तो कल इस ग्रेस राम लक्ष्मण प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से ये विवेचना की कि किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के कुछ अंतरंग कारण है, कुछ बहिरंग कारण है। बहिरंग कारणों में वो युग धर्म की स्थापना करने आए। वैसे तो हर कलयुग में गौर नारायण का अवतार होता है, हर कलयुग का धर्म हरि नाम है और हर कलयुग में गौरांग महाप्रभु आते हैं और हरि नाम का वितरण करते हैं। लेकिन इस कलयुग में जो ब्रह्मा जी के सातवें मन्वंतर के 28वें कलयुग में, द्वापर युग के बाद जो कलयुग है, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु आते हैं, ये विशेष व्रज का प्रेम देने आते हैं, है ना। और क्या देते हैं साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस प्रकार से युग धर्म की स्थापना करते हैं। ये उनका पहला उद्देश्य बाह्य कारण। दूसरा कि वो सबको प्रेमा भक्ति देने आते हैं। भगवान के बहुत से अवतार हुए, उन्होंने भक्तों की रक्षा की, भक्तों को आनंद दिया। किसी भी भगवान ने अपने अवतार में, स्वयं श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को प्रेमा भक्ति नहीं दे पाए। प्रेमा भक्ति मतलब व्रज की भक्ति, जो मुख्यतः चार रसों में की जाती है, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में। इससे पहले जो आते थे अवतार, सब दास्य शांत रस में या दास्य रस में ज्यादा से ज्यादा, वैकुंठ की प्राप्ति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमें प्रेमा भक्ति का प्रदर्शन, प्रेमा भक्ति का वितरण करने आए। ये दूसरा उनका उद्देश्य बाहरी कारण। और तीसरा कारण क्या था, अद्वैताचार्य जी की हुंकार। असहाय अवस्था में जोर जोर से उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हुए। भगवान अपनी लीला में कई बार अद्वैताचार्य को कहते हैं कि ये नाड़ा तुम्हारे कहने पर ही मैं आया, सर्टिफाई करते हैं तुम्हारे कहने पर ही मैंने अवतार लिया। तो ये तीन बाहरी कारण है, तीन अंतरंग कारण। अंतरंग कारण ये, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम को देखते थे, बड़े विस्मित हो जाते थे कि पूरी दुनिया को मैं नचाता हूं, मैं परम नियंता हूं, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं कठपुतली बन जाता हूं। तो राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है उसको जानना। एक बारी भगवान द्वारका में थे और एक स्तंभ में उन्होंने अपनी छवि देखी, अपनी छवि से इतने आकर्षित हो गए, भगवान की इच्छा इसको आलिंगन कर लो, भगवान की इच्छा मैं इसको चाहता हूं, मैं इसको पाना चाहता हूं, लेकिन स्वयं कोई कोई कैसे पा सकता है। तो भगवान को राधा रानी की प्रेम की महिमा को जानना था कि प्रेम की महिमा क्या है। दूसरा अंतरंग कारण, उस प्रेम के आधार पे कैसे राधा रानी श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती है। जब तक हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए प्रेम नहीं होगा, हमें उसके माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। किसी माँ का बच्चा काला करूटा भी क्यों ना हो, क्योंकि माँ के हृदय में उसके लिए प्रेम है तो उसको बहुत सुंदर लगता है, उसका नाम रख देगी श्याम सुंदर। तो क्योंकि हृदय में प्रेम है तो माधुर्य का आस्वादन कर रही है। तो राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है उसकी महिमा के आधार पर कैसे वो कृष्ण की मधुरता का आस्वादन करती है, क्योंकि कृष्ण की मधुरता ऐसी है कि कृष्ण स्वयं उसको चखना चाहते हैं। ये दूसरा अंतरंग कारण। और तीसरा, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करके राधा रानी को कितना आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आनंद को देखकर क्षुब्ध हो जाते थे, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इसका आनंद मेरे आनंद से ज्यादा कैसे ये कमाल है, मैं रसों का सागर हूं, आनंद का भंडार हूं और मुझसे ही सारे आनंद निकलते हैं, लेकिन राधा रानी का आनंद मेरे आनंद से ज्यादा, तो कैसे कैसे इस माधुर्य का आस्वादन कर इसका आनंद मुझसे ज्यादा है। इन तीनों अंतरंग इच्छाओं को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तो भगवान कभी अकेले प्रकट नहीं होते, भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो भगवान ने सब योजना बना ली, सारे पार्षद प्रकट हो गए पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब प्रकट हुए तो स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, अनंत और सभी देवतागण प्रकट हो गए। और इस ढंग से प्रकट हुए कि केवल भगवान कृष्ण ही जानते थे कौन सा मेरा भक्त, कौन सा मेरा संगी किस भक्त के रूप में प्रकट हुआ है। और छा गए अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत से उनके संगी तो नवदीप में प्रकट हुए, कुछ श्रीहट में प्रकट हुए, कुछ श्रीखंड में प्रकट हुए, कुछ उड़ीसा में, कुछ इधर उधर। जैसे कि नवदीप में प्रकट हुए गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, शुक्लंबर ब्रह्मचारी, श्रीधर, जगदीश पंडित, ये कहाँ प्रकट हुए, नवदीप में। छठग्राम, छठग्राम में प्रकट हुए पुंडरीक विद्यानिधि, मुकुंद दत्त, उनके भाई वासुदेव दत्त। श्रीहट में, श्रीहट में प्रकट हुए श्रीवास पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, जगन्नाथ मिश्र, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, ये सब कहाँ प्रकट हुए, श्रीहट। ये सभी स्थान अभी अधिकांशतः बांग्लादेश में है। राड देश जो कि बंगाल में ही है लेकिन जहां गंगा नहीं बहती वहां प्रकट हुए कौन? नित्यानंद प्रभु। और श्रीखंड में प्रकट हुए मुकुंद, चिरंजीवी और रघुनंदन। तो ये सब अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए लेकिन महाप्रभु के प्राकट्य से पहले सब के सब नवद्वीप में आ गए। वृंदावन दास ठाकुर जी एक बहुत ही रोचक प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर प्रकट हुए, बहुत ऊंचे ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए लेकिन उनके जो संगी थे वो गंगा से बहुत दूर प्रकट हुए और ऊंचे कुल में प्रकट नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान ने अपने लिए तो प्रिविलेज रखी, ऊंचे कुल में प्रकट हो गए और गंगा के तट पर, अपने संगियों को निम्न कुल में और बहुत ही अपवित्र स्थान में, तो ऐसा क्यों? तो उसका खुलासा करते हैं वृंदावन ठाकुर जी। ये देश गंगा हरि नाम विवर्जित, ये देशे पांडव नहीं गेल कदाचित, किन किन देशों में डाला अपने संगियों को, वहां तीन परिस्थितियां होनी चाहिए। वो देश में गंगा ना बहती हो, वहां पे कभी हरि नाम ना लिया गया हो और वहां पे भगवान के भक्त पांडव नहीं गए हो। ये वृंदावन दास ठाकुर जी का एनालिसिस है कि जहां पे तीन कंडीशंस नहीं है, जहां गंगा नहीं बहती, यहां पे हरि नाम नहीं लिया जाता और जहां भगवान के प्रिय भक्त पांडव नहीं गए हों, वो देश क्या है? अशुच, क्योंकि वो शुद्ध स्थान नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों को भेजा कि जाओ, और भगवान और भगवान के भक्तों में कोई अंतर नहीं है, जहां जहां पांडव गए वो स्थान शुद्ध हो गया। तो ऐसे देशों में, ऐसे स्थानों में महाप्रभु के संगी प्रकट हुए, क्यों? ये सब जीवेर कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्माए न आज्ञा दिया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान अपने जीवों पे उद्धार करना चाहते हैं। बल्कि ऐसे कुछ स्थान रह गए जहां पांडव नहीं जा पाए, तो क्या कहा महाप्रभु ने, इस बारी अपने संगियों को वहां भेजता कि ऐसे अशुद्ध स्थानों पे जाओ जहां पांडव भी ना जा पाए हो, जहां गंगा भी ना बहती हो और जहां कभी हरिनाम ना लिया गया हो, वहां पर जाइए। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जहां पे भगवान का एक संगी प्रकट होता है, जन्म लेता है, उसके 1,00,000 योजन तक के जितने जीव हैं सब मुक्त हो जाते हैं। कमाल है, सुन के विश्वास ही नहीं होता। 1,00,000 योजन यानी कि 8,00,000 मील, 12,00,000 किलोमीटर तक सारे लोग। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के संगियों में, पार्षदों में इतनी शक्ति है कि अकेला पूरे ब्रह्मांड को तार कर सकता है। 12,00,000 मील तो क्या है, किलोमीटर क्या है, लेकिन उनके जन्म होने ने मात्र से ही 1,00,000 योजन तक के जीव मुक्त हो जाते हैं, ये उनकी वो है। तो मैंने बहुत सोचा इस पर, कैसे है? ऐसे तो लगता नहीं है, विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कुछ भक्तों से भी चर्चा की तो मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसको हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की लीला में। कितने ही पाश्चात्य देशों में, अशुद्ध देशों में लोग प्रकट हुए, तो वो सब हम इसको एनालाइज करेंगे तो इससे मालूम चलता है कि प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, पार्षद हैं, कितने निकट हैं महाप्रभु के। आप ध्यान से सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे महाप्रभु की संकीर्तन लीला, ऐसा नहीं कि महाप्रभु की 48 वर्ष पृथ्वी पर रहे, अप्रकट हो गए तो संकीर्तन लीला बंद हो गई, नहीं, वो संकीर्तन लीला अभी चल रही है। और जो कोई भी हरे कृष्ण आंदोलन में भाग ले रहा है वो महाप्रभु की संकीर्तन लीला में भाग ले रहा है, ये महाप्रभु की विशेष करुणा है। राधा कृष्ण की नित्य लीला में भाग लेना लगभग एक बद जीव के लिए असंभव है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की संकीर्तन लीला में कोई पापी से पापी, अपराधी व्यक्ति भी भाग ले सकता है, ये उनकी विशेष करुणा है। और कैसे उन्होंने अपने पार्षदों को अलग अलग देशों में डाला, हम देखते हैं। शिला प्रभुपाद जब विदेश में गए तो एक एक अपने पार्षदों को उन्होंने पकड़ा, प्रभुपाद जानते थे यहां पे है, यहां पे ये है, लेकिन ऐसे परिस्थितियां हुई जैसे था कि बाय चांस हो गया, नहीं, लगा बाय चांस महाप्रभु शिला प्रभुपाद जी का मित्र उनको भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से मिलाने ले गया, और पहले ही मीटिंग में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने उनको आज्ञा दे दी, इतनी महत्वपूर्ण आज्ञा जिसके कारण पूरी पृथ्वी पे चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, अपने किसी व्यक्ति को आप सबसे जो गहरा संदेश है पहली मीटिंग में कोई देगा? हमारे मंदिर में इतने लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, तो कोई पहले व्यारी मिले और उसको बोले चलिए आप राधा राधिका रमन जी का श्रृंगार कीजिए, इतनी गोहितम सेवा कोई दे सकता है ना? जो उनके हृदय की सेवा थी, जो उनको बहुत प्रिय सेवा थी, उसको बोला आप जाइए विदेशों में, पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए अंग्रेजी भाषा में, पकड़ लिया, हाँ यही वो है पार्षद है। इसी प्रकार से हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी भी ऐसे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे सुरभि महाराज। सुरभि महाराज जी का विशेष संबंध था प्रभुपाद जी से, वो खुद बता रहे थे अपने विषय में। कह रहे थे एक बार वो भारत में आए और भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए, फिर वो वापस विदेश गए और विदेश में उन्होंने कुछ अमेरिकनों को देखा हरे कृष्णा करते हुए, तो बड़ी उनकी रुचि बढ़ गई, लेकिन बाय चांस किसी से मिल नहीं पा रहे थे। फिर वो दोबारा भारत में आए और भारत में जा के पूछ रहे थे लोगों से, यहाँ वो विदेशियों वाला कृष्णा मंदिर है, किसी को पता नहीं था। और बाय चांस 1970 की बात है, प्रभुपाद जी भी लॉस एंजलिस से बॉम्बे में आए और जुहू की जमीन ले ली थी उन्होंने, और वो पूछ रहे थे यहाँ पे सुरभि महाराज, उनका इंग्लिश नाम मुझे याद नहीं, घूम रहे थे यहाँ पे, तो बाय चांस किसी से पूछा उन्होंने यहाँ पे है कोई विदेशी वाला जो कृष्णा मंदिर, किसी ने बोला हाँ इस बिल्डिंग में है। उस समय आकाश गंगा बिल्डिंग मुंबई में प्रभुपाद जी का वो मंदिर था हमारा राधा प्रास बिहारी जी का, तो चले गए आकाश गंगा बिल्डिंग में, वहाँ पर उनको श्याम सुंदर जी मिले तो बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे कुछ आर्किटेक्चर का ज्ञान है। वो तुरंत उनको प्रभुपाद से मिलाने ले गए, प्रभुपाद उनसे मिले, बोले अच्छा कुछ जानते हो आर्किटेक्चर के बारे में, वेरी गुड। प्रभुपाद ने तुरंत एक पेपर निकाला, कुछ ड्राइंग बना दे, बोला ये जुहू में हमारी जमीन है, ऐसा हम मंदिर बनाना चाहते हैं, आप इसको देखो एंड डेवलप इट। बोले मैंने तो कभी मंदिर गया भी नहीं, मंदिर कैसा होता है, बोले इसको विकसित करो। मैं पूछा अच्छा आप कब आए हो, बोले बस कुछ ही दिन आया हूँ। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते, कल हमारी दीक्षा सेरेमनी है उसमें आपको दीक्षा दे देते हैं। उनको पता ही नहीं दीक्षा क्या होती है, बोला यस यस, उनको पता नहीं, यस कुछ नहीं पता क्या इनिशिएशन होती है। अगले दिन इनिशिएशन हो गई उनके और उनका नाम बोला प्रभुपाद ने, आपका नाम है सौरभ, नाम पड़ा था सौरभ, नहीं प्रभुपाद का बंगाली एक्सेंट था, तो इनको सुनाई दिया सौरभ, तो बोले क्या है, पहले तो समझ में नहीं आया, पहले तो मैं पहले ही मीटिंग में मुझे एक मैप पकड़ा दिया कि मंदिर विकसित करो, फिर कोई यज्ञ यज्ञ हुआ, कुछ मंत्र उच्चारण हुए, कुछ पकड़ा दिया, और मेरा नाम भी क्या रखा सौरभ, और बड़े दुखी हो गए कि कौन सा नाम है। तो दोबारा श्याम सुंदर प्रभु के पास गए कि मेरा नाम सौरभ रखे, मैं दुखी हूँ क्या हो रहा है, पहले तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो फिर उन्होंने प्रभुपाद से क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला नहीं सौरभ सौरभ नाम है, अच्छा सौरभ नाम है, तो उनको जोड़ दिया सीधा ही, और वो जुहू का पूरा प्लान बना ले गए। फिर प्रभुपाद उनको मायापुर में ले गए, फिर मायापुर के बाद वृंदावन में ले गए, उनका संन्यास हो गया, वो बन के सुरभि महाराज। और सुरभि महाराज जी का पंजाबी भाग से बहुत निकट का संबंध है, मालूम है आपको क्या संबंध है? हाँ उन्होंने ही राधा राधिका रमन जी को इंस्टॉल किया था लगभग 86 की बात है शायद। उन्होंने पंजाबी भाग, आप में से बहुत कम लोगों ने हमारा पहले वाला सेंटर देखा होगा, छोटा मंदिर था 63 नंबर रोड पे, एक गैराज में राधा राधिका रमन इंस्टॉल थे। तो उन्होंने उस पंजाबी बाग में जो हमारा एक किसी ने हमें बंगलो दिया था चैरिटी में, फिर वापस ले लिया फिर हम यहाँ आ गए, तो उसको उन्होंने अपना इस्कॉन का आर्किटेक्चरल ऑफिस बनाया था। और उस मंदिर में थे, हम याद है कि वृंदावन का पूरा प्लान था, बिल्डिंग थी वृंदावन मंदिर का, मायापुर मंदिर का, जुहू मंदिर के बड़े बड़े फोटोज थे, पूरा मॉडल था वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा वो टाइम लगाते थे पूरा डेवलप करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए कैसे शिला प्रभुपाद जी ने अपने पार्षदों को पकड़ा। बाद में ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश, प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद सुरभि महाराज का भी पतन हो गया, दिखने में ऐसा लगा कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से बाहर हो गए, लेकिन फिर ऐसी कुछ लीला हुई, फिर से वो भक्तों के संग में आ गए। शायद कृष्ण बलराम के 40वीं सालगिरह थी, वहां पे आए वृंदावन में, और फिर पुराने अपने भक्तों से मिले, मित्रों से मिले, गुरु भाइयों से मिले, और फिर से वो वृंदावन में रहने लगे। और फिर सन 2016 में शायद उन्होंने वृंदावन में ही वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ऐसा कोई साधारण चीज नहीं है ना। ऐसे बहुत से प्रभुपाद के पार्षद हैं। प्रभुपाद एक बार अमेरिका में प्रभुपाद के लिए भक्तों ने कार्यक्रम अरेंज किया, बहुत बड़ा हॉल बुक किया, लेकिन आए केवल 20-30 लोग। भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, प्रभुपाद को बुरा लगेगा, लेकिन प्रभुपाद ने उसी उत्साह से कीर्तन किया, प्रवचन दिया। बाद उस प्रोग्राम में कोई लोग इतने रुचि नहीं रख रहे थे। एक युवा था जिसने बहुत रुचि ली, उसने प्रभुपाद से बाद में रुके प्रश्न पूछे, बाद में ये युवा बना धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कैसे कैसे भक्तों पकड़े इसी ढंग से। गौर गोविंद स्वामी महाराज उड़िया परिवार में, वैष्णव परिवार उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ढूंढ रहे थे गुरु, किसी गुरु की तलाश में घूमते 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 वो वृंदावन मंदिर में आ गए। और तब प्रभुपाद वृंदावन में थे, वो प्रभुपाद से मिलना चाहते थे। बहुत से लोग अंदर उनको मिल रहे थे, भक्त लोग मिलने नहीं दे रहे थे। पहली बार जैसे ही मिले प्रभुपाद ने कुछ बातचीत की, प्रभुपाद ने बोला तुम संन्यास लेना चाहते हो? उन्हें कल संन्यास दे दूंगा। अरे कल संन्यास की सेरेमनी थी, प्रभुपाद ने एक व्यक्ति को संन्यास देना था, बोले दो रखना। सब सोचे दूसरा कौन होगा। आ गए गोविंद स्वामी महाराज, वहां बैठ गए, सब हैरान है ये कैसे हो रहा है। प्रभुपाद बोला मैं जानता हूँ क्या है। तो ये आंदोलन जो है ये दिखने में हमें साधारण लग सकता है, बहुत इसमें प्रभुपाद कहते हैं अभी भी इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों में महाप्रभु के पार्षद प्रकट हुए और सब के सब फिर नवद्वीप में आ गए। लेकिन उस समय नवद्वीप की हालत क्या थी, वृंदावन दास ठाकुर बहुत डिटेल में इसका वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि नवद्वीप में, क्योंकि भगवान जानते थे कि स्वयं मैं यहाँ प्रकट होने वाला हूँ, तो सारे के सारे ऐश्वर्य उसमें थे। उसमें सारे ऐसे ऐश्वर्य थे कि जो सप्तपुरी में हैं। सप्तपुरी वो नगरियाँ हैं जहाँ पे व्यक्ति रहकर अपने शरीर छोड़ के सीधा मुक्ति को प्राप्त करता है। कौन कौन सी सप्तपुरी हैं? अयोध्या, काशी, द्वारका, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती और सात हो गए। हाँ सात याद हो गए। क्या क्या है बोलो? अयोध्या, इकट्ठा इकट्ठा तो किसी को याद नहीं होगा ऐसे। अयोध्या, मथुरा, पहले यूपी को पकड़ लो, अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक है ना, चार हो गए। फिर आप आ जाइए एमपी में, अवंती, उज्जैन, फिर साउथ कांची और फिर पश्चिमी भारत द्वारका। ये सात सारे उसके गुण नवद्वीप में थे। और नवद्वीप की क्या विशेषता थी, यहाँ पे गंगा बहती थी और कई घाट थे और प्रत्येक घाट पे लाखों लोग स्नान करने आते थे दिन में 3 बारी। और ये पूरे के पूरे विश्व का एक शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य हब था, मुख्य केंद्र था। कितने यहाँ पे छात्र थे, कितने यहाँ पे अध्यापक थे, कोई गिन नहीं सकता था। पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आते थे और सबको एकदम पांडित्य में बिल्कुल परांगत और बहुत गर्वित। इतने गर्वित कि जो विद्यार्थी होता था वो अध्यापक को चुनौती दे देता था और सबके सब बड़े घमंड में आते थे और सबके सब जानते थे कि हम सारे वैदिक शास्त्रों को जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या थी, कोई वैदिक शास्त्रों के सार को नहीं जानता था। यहाँ तक कि तथाकथित भट्टाचार्य, मिश्र, चक्रवर्ती, वो भी नहीं जानते थे कि वेदों का सार क्या है। यहाँ तक कि जो विरक्त होते थे, जो तपस्वी होते थे, वो भी नहीं जानते थे। ज्यादा से ज्यादा वो चंडी की पूजा करते थे, सांपों की देवी विषहरी वासुली उसकी पूजा करते थे, पूरी पूरी रात चंडी का कीर्तन करते रहते थे। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, इंद्र तृप्ति करो, खूब धन कमाओ, इंद्र तृप्ति करो। और इंद्र तृप्ति में अपने बच्चों के विवाह में पूरा धन उठा देते थे और जो सारा धन बचता था वो अपने कुत्ते और बिल्लियों की शादियां करते थे, ऐसे उनके शौक थे। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो कलयुग में भविष्य में आने वाले लक्षण थे अभी से प्रकट हो गए थे। वो लक्षण क्या थे? भगवतहीनता, कृष्ण की बिल्कुल भी भक्ति नहीं करना। जो लोग भगवत गीता या भागवतम का प्रचार भी करते थे उनको भी नहीं मालूम था कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इतनी बुरी हालत थी। और सब लोग जानते ही नहीं थे कि कलयुग का धर्म भगवान का गुणगान करना है। वृंदावन दास ठाकुर रख रहे हैं, उनके लिए धर्म था दोषारोपण करना, फॉल्ट फाइंडिंग में सब एक्सपर्ट थे, और उनको बोलो कुछ गुणगान करो तो केवल अपना गुणगान करते थे, अपने जन्म का, अपनी विद्या का। तो ऐसी स्थिति थी। तो जब ऐसी स्थिति में भक्त लोग देखते थे तो भक्तों का हृदय पिघल जाता था, भक्त लोग रोते थे, भक्त लोग कहते थे ये इतने पंडित हैं, इतना अच्छा इनको जन्म मिला है, क्यों अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको बहुत दुख होता था और वो भगवान से प्रार्थना करते थे इनको सही बुद्धि दो, इनका उद्धार हो। देखिए ये भक्तों में और अभक्तों में फर्क होता है। भक्त लोग पर दुखे दुखी, भक्त लोग कहते थे कि किस आनंद की खोज में जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, ये इंद्र तृप्ति का मार्ग तो इनको जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसाए रखेगा, कितने दुख की बात है। और आनंद अभ्यासात, हमारी तो वास्तविक जो हमारा स्वभाव है आनंद में रहना है, हमने केवल क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। और कलयुग में तो और भी आसान है, केवल हरिनाम की शरण ग्रहण करनी है। और ये ना जानकर अपने जीवन को कितना जटिल बना रहे हैं और कितने दुख में जा रहे हैं, बहुत दुखी होते थे। लेकिन जब वो इनको प्रचार करते थे तो वो भक्तों का मजाक उड़ाते थे, वो भक्तों पे कहते थे अरे तुम क्यों रो रो के भगवान के नाम को पुकारते हो, क्या मिला तुम्हें, भगवान के नाम को जोर से पुकारते हो, रोते हो, गरीब का गरीब रह गए और मृत्यु से तो बचे नहीं, क्या फायदा हुआ, मरना भी तुमको है और रहना भी गरीब है, ये जीना भी कोई जीना है। अरे मैं याद आया इसी डायलॉग में, मैं शुरू शुरू में जब जुड़ा, चार नियमों का पालन शुरू किया, तो भगवत गीता मैराथन के लिए अपने किसी जानकार के पास गए, बहुत बड़े व्यापारी थे वो साउथ दिल्ली में, उनके पास गए तो उन्होंने बोला, पहले तो वो बियर पी रहे थे, बोले लोगे, मैं कह नहीं मैं नहीं पीता, अच्छा ठीक है लाओ यार कोका कोला लाओ, मैं कह नहीं मैं वो भी नहीं पीऊँगा, अच्छा चाय लोगे चाय, मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्या यार क्या जीना, ये जीना भी जीना। तो मैंने भी उसको देख के बोला क्या ये जीना जीना है। तो वो कहते हैं क्या जीना है आपका, रो रो के भगवान को पुकारते, लेकिन भगवान क्या सुन रहा है, ना तुम्हारे को मृत्यु से बचा रहा है, ना तुम्हारी गरीबी को दूर कर रहा है, और उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे क्यों पुकार रहे हो भगवान को। उस समय श्रीवास ठाकुर, उनके भाई श्रीपति, श्री राम, श्री नधि, ये चारों भाई परम वैष्णव थे, ये अपने घर में कीर्तन करते थे। जब कीर्तन का शोर मचता था, ये लोग बड़े परेशान होते थे, बोले ना हमें सोने देते ना खुद सोते हैं, और भगवान भी सो रहे हैं, चतुर्मास चल रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, उनको क्यों उठा रहे हो। और बाय चांस वो उठ गए और उनका नाम है हरि, हरि तो सब हर लेते हैं, हमारे नवदीप के ऐश्वर्य को हर लेंगे, ये सब इनके कारण होगा। और अगर भगवान से भी बच गए तो ये मुस्लिम राजा नहीं छोड़ेगा, इस मुस्लिम राजा ने, इनके कारण हमें बहुत समस्या आने वाली है। तो एक ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आ गया, कह रहे इनके घर के तोड़ो और सबके सब को लेकर गंगा में फेंक दो। तो जब ये भक्त लोग सुनते थे उनका बड़ा दुख होता था। सभी भक्तों के जो वैष्णव शिरोमणि थे अद्वैताचार्य जब ये देखते थे तो कहते थे भगवान अब आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए। और जब उनको देखते थे भक्त लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, भक्तों को लोग समझ नहीं रहे हैं, तो बहुत परेशान होते थे, भक्त लोग रोते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, और वो क्या करते थे, उपवास रखते थे। देखिए इतनी करुणा, हम लोग अपने आप को जान सकते हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए कितना प्रेम है। कैसे जान सकते हैं, जब भगवान में, जब हम बाहर संसार की स्थिति देखें तो संसारी लोगों को देख कर हमारा क्या रिएक्शन होता है, क्या हमारे हृदय में उनके लिए कुछ करुणा उत्पन्न होती है, अगर नहीं या हमें आनंद आते देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, हम कितने आनंद में हैं, हम अपने आप को उनसे बेहतर समझ रहे हैं, तो ये भक्ति में उन्नति के लक्षण नहीं है। पर दुखे दुखी, वो देख रहे जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कितने धूर्त और मूर्ख लोग हैं, इस भौतिक संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, क्या भौतिक तरीके से सुख मिल सकता है। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य बहुत दुखी होते थे, वो उपवास रखते थे, किसी भक्त को खाने की इच्छा ही नहीं होती थी ये संसार की स्थिति को देखकर, और वो रोते थे। और फिर अद्वैताचार्य जी ने गौतमिया तंत्र में एक मंत्र पढ़ा जिसमें लिखा था तुलसी दल मातृण चुलकस्य जलकेन वा विकृतेन स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, कोई उनको प्रेम से तुलसी का दल और चुल्लू भर पानी भी अर्पण कर दे, भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। बोले अरे भगवान इतने सरल हैं, तुमने क्या किया, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, तुलसी दल और जल से गंगा जल से उनकी पूजा करने लगे और जोर जोर से भगवान को हुंकार मार के बुलाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं उनकी हुंकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड के सारे आवरणों को भेदते हुए वैकुंठ में भगवान को सुनाई दे रहे थे। आपकी आवाज हमारी आवाज जारी होगी वैकुंठ तक। चलो अब पुकारते हैं हृदय से, बिल्कुल असहाय अवस्था में। एक देखा है हमने, पूरे के पूरे शास्त्रों में देखा है, जब भी किसी भक्त ने भगवान को हृदय से असहाय अवस्था में पुकारा है, भगवान ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, भगवान उसी समय प्रकट हुए हैं। कौन कौन से उदाहरण है? द्रौपदी का, और किसका? गजेंद्र का। जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान को इतनी जल्दी थी, गरुड़ जी आए, बोला नहीं जल्दी है, गरुड़ पे भी नहीं बैठे। और रुक्मिणी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो हा बोला रुक्मिणी को और था बोला तब जब हाथी के पास पहुंचे। इतनी जल्दी, जैसे कह मेरी हम बहुत जल्दी, कौन गाड़ी पैक करेगा आगे जाएगा, सीधा भागो। हालांकि गरुड़ जी भी इतनी तेज चलते रहे कि भगवान सीधे पहुंच गए वहां पे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम पुकारेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। हमें प्रतिदिन प्रभुपाद ने बताया 16 माला जप करो। नहीं, प्रभुपाद क्या कहते थे, कैसे पुकारो? जैसे एक बच्चा रोते हुए माँ को पुकारता है, लेकिन वो क्राई कहते हैं प्रभुपाद जेन्युइन क्राई होनी चाहिए, दिखावटी क्राई नहीं, औपचारिक रोना नहीं। जैसे कई बार बच्चे अपनी माँ को धोखा देते हैं ना, माँ किचन में है, बच्चा दूसरे कमरे में है, तो माँ का अटेंशन बच्चा चाहता है तो कैसे रोता है, मैं, मैं, मैं। और माँ भी मालूम है मैं तेरी माँ हूँ, मुझे धोखा देगा, तो माँ भी कहती हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, शाबाश मैं करते रहते हैं करते रहते हैं। जब अचानक बच्चे को कोई पिन चुभता है या करंट लगता है, फिर बच्चा कहता है वाह, फिर तो माँ सब कुछ छोड़ के भाग के आती है ना। इसी ढंग से ज्यादातर हमारी जो 16 माला होती है, अरे अब कोई रोते रोते कोई सोता है क्या? अगर मतलब बच्चा रो रहा है मैं सो गया, तो माँ बोली मस्त है ये, उसको जरूरत ही नहीं है। तो हमारा रोना भी कैसा रोना होता है, देखिए कैसे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु जी 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, भगवान आ ही नहीं रहे, क्या है ये? अरे अपने हमने पुकारा कहाँ है, पुकारा कहाँ है? तो वो असहायता, वो रोना हमें लाना पड़ेगा। जैसे आज सुबह भी गोपेश्वर वो कह रहे थे, जब तक आप चैंटिंग अपने हृदय को नहीं डालेंगे, हृदय कैसे शुद्ध होगा, हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी बोतल में आपने मलमूत्र डाल दिया और उसको पूरे पॉलिथीन से टाइट पैक कर दिया और गंगा जी में फेंक दिया, पूरे गंगा जी सबको पवित्र करेंगे, देखते इसको पवित्र करते हैं नहीं करते, पूरा आपने टाइट पैक कर दिया, गंगा जी को अंदर घुसने का मौका ही नहीं दे रहे, तो क्या वो बोतल पवित्र होगी? नहीं होगी। ऐसे ही हमारा हृदय पैक कर दिया बाहर से, अंदर घुसने नहीं देंगे। इंद्र तृप्ति के इतने अंदर संस्कार भरे हुए हैं, हरिराम को घुसने नहीं देना, अपने हृदय को लगा ही नहीं रहे, तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? तो इसलिए कैसे पुकारना है, असहाय अवस्था में ना, जन ऐश्वर्य सुशोभि एदमन मदा पुंगा। हमें मद है कि हम बहुत ऊंचे कुल में हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी पदवी है, तो वो असहायता नहीं आ रही। इसलिए भगवान को हम हृदय से चाहते नहीं हैं, अभी उनकी आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे। लेकिन अद्वैताचार्य और सभी वैष्णव बिल्कुल हृदय से चाहते थे भगवान आइए, इन जीवों का उद्धार कीजिए। तो आइए असहाय अवस्था में भगवान को पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसा भगवान ने सुना कि मेरे भक्त मुझे ऐसे पुकार रहे, तो बोले हाँ निश्चित रूप से प्रकट होता। और ऐसा नहीं एक बार ही पुकारा, अद्वैताचार्य जी ने भगवान प्रकट नहीं हुए तो अद्वैताचार्य फिर निराश हो गए, ऐसे लिखा शास्त्रों में, कहां प्रकट हुए भगवान? नहीं, दृढ़ता के साथ लगे रहे, दृढ़ संकल्प था। अद्वैताचार्य ने सबको बुलाया, सुनो सुनो श्रीवास, सुनो सुनो शुक्लंबर, यहां पे आओ, मैं भगवान को पुकारूंगा और भगवान यहां प्रकट होंगे। और भगवान हम सबके साथ नाचेंगे गाएंगे हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ करेंगे और इन सब जीवों का उद्धार करेंगे। अगर ऐसा नाम नहीं हुआ तो मेरा नाम अद्वैत सिम्मा नहीं है। ये उनके अंदर दृढ़ता थी, उत्साह था, निश्चय था, धैर्य था। तो इसलिए भी हमें पुकारते रहना चाहिए, पुकारते रहना चाहिए। जब माला करें एक एक माला के एक एक मन के पे हमें भगवान को रो रो कर हृदय से पुकारने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम भगवान के नहीं रोएंगे तो पूरी दुनिया तो हमें रुलाती ही रहती है। कितने ही जन निकल के हमारे रोते 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 हुए आते हैं, रोते हुए ही चले जाते हैं, तो बीच में कैसे हंसेंगे, संभव ही नहीं है। वो तो यहाँ मंदिर में आते थोड़ा हंस पड़ते हैं। तो आप वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन के पांडा के रहते हैं, हाँ 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 हंसिए। तो इसी ढंग से भक्तों के संपर्क में आके हम कुछ हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अगर हम भगवान को दृढ़ता से पुकारेंगे भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान ने देखा कि भक्तों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, भक्तों का जो कष्ट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए भगवान ने सोचा मैं प्रकट होता हूँ। तो ऐसे अरेंजमेंट्स हुए कि जगन्नाथ मिश्र श्रीहट से आ गए नवद्वीप में, लीलांबर चक्रवर्ती भी आ गए। जगन्नाथ मिश्र में बताया जाता है सारे के सारे वसुदेव दशरथ और कश्यप जैसे गुण थे, वो अपने धर्म में पक्के थे। सच्ची देवी भी सर्वगुण संपन्न थी, वो साक्षात यशोदा माता देवकी माता थी। और नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी पुत्री का विवाह जगन्नाथ मिश्र से किया। जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता की पहली 8 पुत्रियाँ हुई और सबका जन्म होते ही निधन हो गया। तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर सोचा कि अब गोविंद की शरण बहुत दृढ़ता से ग्रहण करनी है। तो उन्होंने भगवान गोविंद की शरण बहुत दृढ़ता से ग्रहण की और फिर क्या हुआ कि स्वयं अनंत शेष प्रकट हुए सच्ची माता के गर्भ से विश्व रूप के रूप में। और जब उन्होंने विश्व रूप को पाया अपने पुत्र के रूप में तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी भक्ति और प्रगाढ़ कर दी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति और भक्त में ये अंतर होता है। साधारण व्यक्ति की जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर भगवान की भक्ति में ढीला पड़ जाता है, लेकिन जो भक्त होते हैं जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, उनका ऐश्वर्य बढ़ता है, तो क्या करते हैं अपनी भक्ति को और बढ़ा देते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता ने अपनी भक्ति और बढ़ा दी। उसके बाद कुछ समय के बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान पहले प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में और जगन्नाथ मिश्र के हृदय से वो स्थानांतरित हुए सच्ची माता के हृदय में। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ विस्तार में बताते हैं कि भगवान का प्राकट्य एक साधारण बालक की तरह वीर्य से नहीं होता, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और फिर हृदय से वो गर्भ में आते हैं। और जब सच्ची माता के गर्भ में भगवान प्रकट हो गए तो सच्ची माता बिल्कुल इतनी दिव्यमान हो गई, बहुत उनका दिव्य देह, उनके देह एकदम दिव्य हो गई और कांति निकल रही है, क्योंकि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान उनके देह में है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, ना तद भासते सूर्य न शशांको न पावका। भगवान के धाम में अग्नि नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वयं तेज वहां पे है। तो जो सूर्य है, कहा जाता है कि सूर्य का जो तेज है वो भगवान के सुदर्शन चक्र के तेज के 1000वां हिस्सा है। और भगवान के सुदर्शन चक्र का जो तेज है वो भगवान के पाम के 1 नाखून का 1000वां हिस्सा है। तो भगवान का तेज आप समझ लें क्या होगा। और वही भगवान सच्ची माता के गर्भ में है। तो सच्ची माता की ये स्थिति है। और जगन्नाथ मिश्र जी कह रहे हैं कि आजकल मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे बहुत आदर देते हैं, अपने आप बुला बुला के भिक्षा देते हैं, इतना सम्मान इतनी भिक्षा मुझे पहले कभी नहीं मिले। और यहाँ शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम भी अपने अपने हृदय में कृष्ण को रखेंगे तो हमें संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारा पालन करेंगे। अक्सर हम लोग यही चिंतित रहते हैं, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। ये छोड़कर अगर हम भगवान का चिंतन करें और भगवान को अपने हृदय में लाएं तो भगवान हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। इस प्रसंग में अभी हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है हंटिंग द रिनोसर्स। उसका 5 मार्च को दिल्ली में ईस्टर क्लाश मंदिर में इसका लॉन्चिंग भी है, आप लोग जा सकते हैं। स्वयं श्याम सुंदर प्रभु भी वहाँ पे होंगे। तो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि जनवरी 1967 में श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में आए। और देखिए प्रभुपाद जी क्या लीला है। मार्च 1977 में जगन्नाथ जी स्थापित हो गए, दो महीने में, और दो महीने तक 25 जो लोग थे मंदिर में शिफ्ट भी हो गए। ऐसा फास्ट ट्रैक चल रहा था। और प्रभुपाद जी वापस आ गए वहां से, किसी को पता नहीं जगन्नाथ जी क्या है, कैसे पूजा सिखा के चले गए और सब कर रहे हैं। 25 लोग रहते हैं सेंटर में और उनके पास कैसे मंदिर चलाना पता ही नहीं, और उस सेंटर का जो किराया है इनको भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं। 6-7 महीने बीत गए, वो रेंट पे नहीं कर रहे, और मालिक ने बोल दिया आप खाली करो, निकलो यहाँ से। बड़े परेशान थे। तो सर्दी का मौसम था, श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता सुबह सुबह आ रहे थे, पूरा कोहरा छाया हुआ था और बड़े परेशान थे। तभी अचानक क्या देखा, मंगल आरती के लिए जा रहे थे वो, तभी अचानक क्या देखा कि कुछ ऊपर से टपक रहा है, ऐसे गिर रहा है, कुछ कागज गिर रहे हैं। और देखा तो ध्यान से ये उन कागजों में देखा तो डॉलर था, और एक नहीं दो नहीं ऐसे गिर रहे हैं, पता नहीं कहां से गिर रहे हैं। सारे डॉलर इकट्ठे किए तो $2,000 हो गए। द मनी वॉज रेनिंग, वो लिख रहे हैं डॉलर बरस रहे थे, $2,000 इकट्ठे किए, और हैरान थे कहां से क्या है ये, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा ना ये उनके साथ हुआ है और उन्होंने पुस्तक में लिखा है। $2,000 आ गए और गए अपने आप कहां से, पहले तो परेशान रहे कहां से, नकली है असली है, चला के देखा असली है, सारे के सारे उनके जो डेब्ट थे वो क्लियर हो गए। गौरांग महाप्रभु की जय। तो ये चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि अभी चमत्कार नहीं होते। अगर हम भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं तो भगवान निश्चित रूप से पूर्ण रूप से हमारी सुरक्षा करते हैं। जी गोस्वामी जी कहते हैं जो शरणागति के 6 लक्षण है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचनम, रक्ष से स्थिति विश्वासो, गोपतृत्व वर्णम तथा, ये चौथा लक्षण है गोपतृत्व वर्णम तथा, ये मुख्य लक्षण है। इसका मतलब है कि कृष्ण हमारे पालक हैं, कृष्ण हम सबका पालन करेंगे, तो ये शरणागति का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में भगवान प्रकट होते हैं, और तब सभी देवतागण, जैसे कि कृष्ण कंस के कारागार में देवकी के घर में थे, सभी देवतागण वहां पर प्रकट हो जाते हैं और सच्ची माता के घर में तरह तरह की स्तुतियां अर्पण करते हैं। तो वो स्तुतियां क्या है, भक्ति करी ब्रह्मादि देवर सुन स्तुति, ये गोप्य श्रवण हय कृष्ण रति मति, वृंदावन ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। वो श्रुतियों को बताने से, इन स्तुतियों को बताने से पहले श्रुति फल बता रहे हैं। कह रहे हैं भक्ति करी, कोई भक्ति से ब्रह्मादि देवे, ब्रह्मा आदि देव जो आए सुन स्तुति, उनकी स्तुति को सुनता है, कैसे भक्ति से। ये गोप्य श्रवण, ये वेदों में भी नहीं लिखी हुई है, ये वेद गोप्य है। जो इसका श्रवण करेगा उसको क्या होगा, कृष्ण रति मति, उसकी मति कृष्ण में रम जाएगी। तो सुनना चाहेंगे आप लोग, उससे क्या फल मिलेगा हमें, कृष्ण में हमारी रति हो जाएगी। तो बहुत सी स्तुतियां हैं, कुछ 7-8 स्तुतियां हमने चुनी हैं, तो आप सब इकट्ठे बोलिए, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय भक्त दमन, जय जय सर्व सत्यमय क्लेवार, जय जय इच्छामय महामहेश्वर, हे तुमि अनंत कोटि ब्रह्म निर्वार, से तुमि श्री शचि गर्भे करिला प्रकार, तथापि तुमि से अपने अवतारी, सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य करी, सबको समझ में आ गया ना, मतलब बहुत सरल है ना। जैसे पिछले प्रयाग में बताया कि आपकी आज्ञा से आपके एक एक सेवक में इतनी शक्ति है कि वो अनंत ब्रह्मांडों का तार कर सकता है। एक एक सेवक, एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत ब्रह्मांडों को तारने की शक्ति आपके एक सेवक में है। फिर आपको आने की आवश्यकता है, तथापि तुम इसे आने फिर भी आप स्वयं अवतार लेते हैं, है ना, क्योंकि आप पृथ्वी को धन्य कर देते हैं। संकीर्तन पूर्ण है वे सकल संसार, घरे घरे है वे प्रेमा भक्ति प्रचार। ये तो मारा पाद पद्म नित्य ध्यान करे, तासा बार प्रभाव अमंगल हरे। पद काले खंडे पृथ्वी अमंगल, दृष्टि मात्र दशा दिक है सो निर्माण। वो कह रहे हैं आप यहाँ संकीर्तन करने आए हैं, तो संकीर्तन कैसे है, पद ताले खंडे पृथ्वी रे अमंगल, आपके पांव, आपके भक्तों के पांव जहां पड़ते हैं वहां पृथ्वी का अमंगल खत्म हो जाता है, और जहां दृष्टि डालते हैं दसों दिशाओं का अमंगल चला जाता है, वो निर्मल हो जाती है। बहु तोले नाचीते स्वर्ग विघ्ननाथ, हे न यश हे न नृत्य हे न तोरदास। और आपके दासों का क्या यश है, जब वो दोनों बाजुएं ऊपर करती हैं तो ऊपर के लोग स्वर्ग लोगों का विघ्न नाश हो जाता है। तो बोले स्वर्ग लोग का क्या विघ्न है, तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर महाराज कह रहे हैं स्वर्गों में दो तरह के विघ्न हैं। पहला विघ्न तो ये है कि वहां इतने ऐश्वर्य हैं, इतनी इंद्र तृप्ति की सुविधाएं हैं कि हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। दूसरा विघ्न देवताओं को ये लगता है कि कभी असुर आक्रमण ना करके सारा ऐश्वर्य ना छिन ले, तो दोनों स्थितियों में वो विघ्न ही है उनके, ऐश्वर्य छिन ना जाए और ऐश्वर्य रहे तो वैसे भी भगवान से दूर होते हैं। लेकिन जब भक्त लोग हाथ ऊपर करके क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऊपर के लोगों के भी विघ्न दूर हो जाते हैं। नव दीपा प्रत्योथा कुक नमस्कार, शचि जगन्नाथ गहे यथा अवतार। हे मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने, गुप्ते रही ईश्वर नस्तवाने। प्रतिदिन आते थे और कितने दिन रहे सच्ची माता के घर में, 13 महीने रहे। 13 महीने, साधारण शिशु 8 या 9 महीने रहता है ना, 13 महीने तक रहे और देवताओं को तो और अच्छा अवसर मिल गया। प्रतिदिन आते थे ब्रह्मा आदि देवतागण और इस प्रकार से भगवान से वो प्रार्थना करते थे।
शची गर्भे वैसे सर्व भुवन रवास, फागुनी पूर्णिमा आसी हैल प्रकाश।
तो इस प्रकार से फागुन की पूर्णिमा के दिन फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ। चैतन्य महाप्रभु की जय। और क्या हुआ,
अनंत ब्रह्मांडे अत आछे सुमंगल, से पूर्णिमाए आसी मिलीला सकल।
जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी सुमंगल हैं, शुभ लक्षण हैं, वो उस पूर्णिमा के दिन सबके सब प्रकट हो गए। सारे अनंत ब्रह्मांड यद आछे सुमंगल, सही पूर्णिमा आसी मिलीला सकल, सब मिलके वहां प्रकट हो गए। इतनी शुभ परिस्थितियां हो गई। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी इच्छा से राहु को आदेश दिया कि तुम चंद्र को खा लो, तो चंद्र ग्रहण लग गया। जब चंद्र ग्रहण लग गया तो नवदीप वासी जो कभी हरि का नाम नहीं लेते थे, सबके सब, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, दुर्जन हों, सज्जन हों, सबके सब बाहर आ गए और सबके सब गंगा में जा रहे हैं। नवदीप वासियों में जो सबसे कोई खाली पुण्य व्यक्ति भी होता था, वो कभी कभी हरि का नाम लेता था। पहले गंगा में जब स्नान करने जाएगा, कुछ पुण्यमान उसको माना जाता था, तो गंगा स्नान करते हुए गोविंद या कुछ भगवान का नाम लेता था। वो सोचते थे स्नान के साथ साथ पाप भी धुल जाएंगे भगवान का नाम लेने से, साबुन की तरह इस्तेमाल करते थे भगवान के नाम को। लेकिन अब तो सभी सभी चल पड़े और सभी बोल रहे हैं क्या, हरी 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 हरी, कह रहे हैं चारों दसों दिशाओं में इतनी जोर से हरि की गूंज हुई कि पूरा ब्रह्मांड भर गया, और ब्रह्मांड भर गया, हरि का नाम अभी भी उसको स्थान नहीं मिल रहा, ब्रह्मांड से भी बाहर निकल रहा है हरि हरि सभी दिशाओं में, और देवतागण भी हरि हरि कर रहे हैं, और नवदीपवासी भी हरि हरि कर रहे हैं।
संकीर्तन सहित प्रभु अवतार ग्रहण करे न प्रचार।
संकीर्तन के साथ भगवान का अवतार हुआ, अपने अवतार से पहले अपना मिशन क्लियर कर दिया और छल किया, बोले वैसे तो ये लोग नाम लेंगे नहीं, क्या करो ग्रहण कर दो।
अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नान जाए हरि बोल हरी ध्वनि है सर्व न दिया ब्रह्मांड पूरी ध्वनि स्थान नहीं पार।
इतनी हरी ध्वनि निकली कि पूरे ब्रह्मांड में स्थान ही नहीं बचा।
अपूर्व शून्या सब भगवत गान सबे बाले निरंतर हऊ का ग्रहण।
अब सारे भगवत गण थे, उन्हें बोले क्या हो गया ये, पूरे कभी तक उन्होंने नवद्वीप में हरि का नाम नहीं सुना था, और अभी क्या हो रहा है, चारों तरफ से हरि बोल 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 हरि बोल। ऐसे हरि बोल सुन के भगवान प्रकट होने वाले नहीं है, पूरा हरि बोल 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 हरि बोल। आप कहीं हरि बोल सुन के भक्त लोग क्या कर रहे थे, उनकी ये इच्छा थी कि ये ग्रहण हमेशा ही लगा रहे।
सबे बाले आज बड़ वासिया उल्लास हे ना बोझे केवा कृष्ण करेला प्रकाश।
आज जो मन में उल्लास आ रहा है, ऐसा कभी उल्लास हुआ ही नहीं। बाकी ये लोग तो डर के जा रहे थे चंद्र ग्रहण से, डर के गंगा में स्नान के लिए हरि बोले थे। जो भगवान के भक्त अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर शिवास ठाकुर, उनको लग रहा था ये इतना उल्लास कैसे, निश्चित रूप से कृष्ण प्रकट हो गए हैं।
राहु केवल इंदु प्रकाश नाम सिंधु काली मर्दन बाजे वाणा पाहु बेला पर काश भूमि चच दुर्दश जय जय पाड़िल घोषणा।
जब राहु ने जय श्री राधा राधिका रमन प्रकट हो गए, देखिए कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी। जब राहु ने चंद्र को ढक दिया और हरिनाम का सिंधु प्रकट हो गया, कली का दमन हो गया, विजय का पताका लहराने लगा, तब परम पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए और पूरे 14 लोकों में क्या हो रहा है, जय 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 जय
श्री चरण ध्वजे ब्रज शोभे सब अंगे जाग मन लोभे।
और कैसे है उनके चरण में, उनके चरण में ध्वज है वज्र है, और उनके सब अंग सबको बहुत लुभा रहे हैं।
दूरे गेला सकल आपत व्यक्त हईल सकल संपत जितने भी आपत थे कष्ट थे सब दूर हो गए, और सबके सब जगह क्या हो गई, संपन्नता छा गई,
सारे के सारे दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। तब देवता गणों को क्या हो रहा है ना, वृंदावन ठाकुर जी देवताओं के बारे में बता रहे हैं।
अनंत ब्रह्मा सेवा अधिकारी यत दे सबाए नर रूप धरी रे गायन हरि हरि ग्रहण छला कर लखिते कह नाही पारी रे।
ब्रह्मा जी शिव जी अनंत जी जितने भी देवते सब लोग मनुष्य रूप धारण करके आ गए और हरि हरि बोल रहे हैं। बोले अब तो ग्रहण लगा हुआ है, सब हरि हरि बोलो, और ये कहकर क्या सच्ची माता के आंगन में जा रहे हैं, कोई उनको देख नहीं पा रहा, सब अंधकार है। और फिर क्या कर रहे हैं,
आनंदे इंद्रपुर मंगल कोलाहल साज साज बलि साज रे बहुत पुण्य भागे चैतन्य परकार पाओल माझे रे।
कह रहे आनंदे इंद्रपुर जो इंद्र जी की राजधानी है अलकापुरी मंगल कोलाहल वहां तो कुमोशन हो गया घड़ भगड़ मच गई सारे देवता 33 करोड़ देवताओं में भगड़ मच जाए क्या होगा सोचो भगड़ मच गई। अरे भैया नीचे भगवान प्रकट हो गए हैं जो उनका दर्शन कभी प्राप्त नहीं होता समय बहुत कम है जल्दी चलो लेकिन जाने से पहले क्या करो साज साज सजा के जाओ किसके दर्शन करने जा रहे हो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। अब देखिए देवतागण मनुष्य से कितने सुंदर हैं कितना उनका देह सुंदर है कितने सुंदर सुंदर वो आभूषण डालते हैं लेकिन जब भी वो परम पुरुष भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं बोले नहीं अभी और सजाओ अपने आप को। तो जब भगवान के सामने अपने आप को लाए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने प्रेजेंट करना चाहिए क्योंकि इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन तो अपना भी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट करें। देवतागण अपने को सजा रहे हैं और भगदड़ में सबके सब जा रहे हैं नवदीप में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। अन्यो अन्यो आलिंगन चुम्बन घन घन लाज के है नाही माने रे नदिया पुरंदर जनम ओला से आपन पर नाही जाने रे। क्या कर रहे हैं इतने आनंद में आ गए कि एक दूसरे को गले लगा रहे हैं एक दूसरे को खूब चूम रहे हैं कोई लज्जा नहीं रही इतनी खुशी हो गई कैसे खुशी प्रकट करें और जा रहे नदिया पुरंदर जन्म उल्लास से कितना उल्लास है आपन पर ना ही जाने रहे कौन अपना है कौन पराया कोई फर्क नहीं पड़ता जो मिल रहा है उसको गले लगा रहे हैं चुंबन कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी सब सच्ची माता के आसपास खड़े हो गए कोई चामर कर रहा है कोई फूल बरसा रहा है कोई छतरी पकड़ के बैठा हुआ है कोई नाच रहा है कोई गा रहा है जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जब अभिषेक होता है ऐसे हो रहा होता है ना कोई गा रहा होता है कोई नाच रहा होता है कोई चामर कर रहा है कोई घंटी बजा रहा है कोई शंख बजा रहा है तो इतना सुंदर वातावरण हो गया था क्योंकि गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। गौरांग महाप्रभु के इस प्रकार से दूसरे अध्याय में वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए। अब जब बच्चा प्रकट होता है तो क्या किया जाता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है ना। तो जन्म कुंडली बनाने के लिए आप सच्ची माता के जो पिताजी थे उनका नाम हम जानते हैं शिलांबर चक्रवर्ती और इतने सुंदर थे गौरांग महाप्रभु उनका चंद्र समान चेहरा था और जब वो प्रकट हुए एक एक अंग इतना सुंदर जिसे कहते हैं कि लावण्य की सीमा को पार कर दिया है ना। जो सुंदरता की परिकाष्ठा होती है उसको लांग गए उनका एक एक अंग इतना सुंदर जैसे कि सोने की कोई गुड़िया हो ना। अब सोने की गुड़िया को हम कैसे समझेंगे ना सोने की गुड़िया की तरह उनका है और इतनी मधुर और कैसे वो प्रकट हुए कि चारों तरफ हरी ध्वनि चल रही है मुस्कुराते हुए प्रकट हुए क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया तो हंसते हुए प्रकट हुए और जब उनका हंसता मुस्कुराता चंदन रूप चांद रूपी चेहरा देखा तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र का भी आनंद खूब बढ़ गया वो तो आनंद के सागर में डूब गए। तब नीलांबर चक्रवर्ती वहाँ आते हैं उन्होंने कुछ गणना की और उन्होंने कहा इस बच्चे के हर लग्न इतने शुभ हैं ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं और सारे के सारे लक्षण एक महाराजा प्रकट हुआ है और वहां के बंगाल में उस समय में ये लोग उगते थे कि भविष्य में एक ब्राह्मण पूरे बंगाल का राजा बनेगा तो हो सकता है ये वही हो। एक बोले नहीं 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 राजा क्या राजा से ही बहुत बड़े इसके लक्षण है ये तो बृहस्पति को भी मात दे देगा इतना बड़ा विद्वान होगा। तभी वहां पर एक और भक्त थे जो कि ज्योतिष ज्ञान जानते थे तो उनको बोला गया कि आप कुछ करिए तो उस ज्योतिष ने क्या कहा बोले ये तो भैया साक्षात नारायण है ये तो धर्म की स्थापना करेगा ये तो खूब प्रचार करेगा और ये क्या करेगा ब्रह्मा शिव शुक यहा वांछे अनुक्षण इहा हेते ताहा पाई लेका सर्वजन। बोले ये तो सबको सब जनों को क्या बांटेगा ऐसी चीज बांटेगा जो कि ब्रह्मा शिव जी और सुखदेव जी को भी प्राप्त नहीं हुई वो वांछा करते उनको नहीं मिलेगी लेकिन सब जनों को ही बांट देगा क्या बांटेगा
कृष्ण प्रेम हरि नाम। तो कवि कर्णपुर जी अपने चैतन्य चंद्र अपने नाटक में लिखते हैं कि जो भगवान गौरांग महाप्रभु के भक्ति के पथ पे आनंदित होकर चल रहे हैं और उनको जो आनंद मिल रहा है उसको स्वयं व्यासदेव जी समझ नहीं पाए, कोई उसको बौद्धिक बुद्धि से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, स्वयं सुखदेव गोस्वामी उसको प्रकट नहीं कर पाए, सुखदेव गोस्वामी जो क्या स्वयं कृष्ण अपने भक्तों के सामने उसको प्रकट नहीं कर पाए, इतना विशेष है। तो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत बांटेगा। फिर बोल रहे हैं बहुत सुंदर लक्षण बता रहे हैं, सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जग तेरा प्रीत है वा इहाने। बोले इस बालक के जो दर्शन करेगा उसके साथ तीन बातें होंगी। पहला क्या होगा कि जो उनके दर्शन करेगा इस उसको उनसे प्रेम हो जाएगा, इतना सुंदर रूप। दूसरा उसका सब जीवों के प्रति ही दया हो जाएगी, सर्वभूत दयालु। और तीसरा इस भौतिक संसार से अनासक्ति हो जाएगी। कौन कौन दर्शन करना चाहेगा गौरांग महाप्रभु के? क्या क्या होगा? पहला लक्षण क्या होगा? उनसे ही प्रेम हो जाएगा। दूसरा सब जीवों के प्रति दया हो जाएगी। और तीसरा केवल दर्शन मात्र से। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं अपने भागवतम में छठे स्कंद के तात्पर्य में कि जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने जोर जोर से हरि नाम करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो क्या हो जाएगा? उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि वो शरीर नहीं आत्मा है और कृष्ण का दास है। कितनी आसान है। इसके बाद लगता है ये क्या पूरा ब्रह्मांड क्या, यहाँ तो ब्राह्मण भी इसको आदर देंगे और यमन लोग भी इसकी पूजा करेंगे, ये कोई विशेष बालक है। फिर बोलते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इसका गुणगान होगा, ये तो धर्म का मूर्तिमान रूप है। और बोले कि मैं तो बहुत लगाने यत कहे शुभ लक्षण यहाँ कार शक्ति आछे ताहा करीते व्याख्या। ये तो ऐसे शुभ लक्षण है इसका व्याख्या कौन कर सकता है, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। ये कह रहे धन्य तुमि मिश्र पुरंदर भाग्यवान यार ए नंदन तार रघु प्रमाण। हे जगन्नाथ मिश्र जी आप तो बहुत भाग्यवान है, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। जगन्नाथ मिश्र जी की हे ना कोष्ठी गाणी नाना आमी भाग्यवान श्री विश्वामर नाम इहे बे इहान। बोले मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसकी जन्म कुंडली की गणना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका तो नाम क्या होना चाहिए? विश्वामर, विश्वामर भगवान की। तो इस प्रकार से अब ये जब सुना, आप कोई माता पिता अपने बच्चे का इतना गुणगान सुनेंगे तो कैसा लगेगा? हमारे यहाँ तो खाली यही बोलते हैं बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वो इतने खुश हो जाते हैं ये बहुत बड़ा धनवान बनेगा, ये तो ये आईएएस ऑफिसर बनेगा, इसके अंदर राजयोग लिखा है, तो बड़ा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन सब बता भी देते हैं, फिर बोले इसमें काल सर्प का भय है, ये है फिर थोड़े उदास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी को तो आनंद की सीमा नहीं रही। बोले मैं क्या दूँ इनके पास, मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे मैं बहुत निर्धन हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकते। तो क्या किया जगन्नाथ मिश्र जी ने, ब्राह्मण के पाँव पड़ गए और रोने लगे। और वो जो ब्राह्मण है बोले आप क्या कर रहे हैं, आप तो इतने भाग्यवान है ऐसा पुत्र प्राप्त किया है। और जो ब्राह्मण है वो जगन्नाथ मिश्र के पाँव पड़ गए और वो रोने लगा। और जब बाकी भक्तगण थे वो क्या करने लगे, हरी 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 हरी। इस प्रकार से ये उनका जन्म कुंडली बनाई गई। और वहां पे देवता भी आए और देवताओं की जो भारियां थी सब की सब आ गई बंगाली महिलाओं के रूप में और घूमने लगी। और सच्ची माता देख रही है इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां कहां से आ गई नवद्वीप में। और जो अदिति माता थी उन्होंने विश्वंबर के ऊपर अपना हाथ रखा और एक जो धान होती है उसके कुछ पत्ते रखे और बोले तुम चिर आयु हो, तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो। सच्ची माता को बड़ा अच्छा लगा, अरे ऐसी महिला कहाँ से आई। और सभी की सभी जो देवताओं की पत्नियां थी
उन्होंने सच्ची माता के चरणों की धूल सर पे लगाई। तो सच्ची माता पूछना ही चाह रही थी आप कहाँ से आए हो, लेकिन संकोच से पूछ नहीं सकी। वो शर्मा की क्या कर रहे हैं। इस जंग से देवताओं की स्त्रियां भी वहां पर आई और फिर भगवान कहते हैं कि हे नारसे पाछे हाय दुखेरा प्रकाश आतरे ना काही ला प्रभु सन्यास। इससे पहले क्या हुआ था कि जो ब्राह्मण जो थे जो जन्म कुंडली बना रहे थे तो उन्होंने ये भी देख लिया था, एक चीज उन्होंने देखी थी कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, न्यास करेगा। लेकिन बोला अभी बताऊंगा तो रसाभास हो जाएगा। तो ये उसको मालूम था लेकिन उसने प्रकट नहीं किया, बताया नहीं। तो अगर आपने जो ये सुनी है महाप्रभु का जो जन्म आपने भक्ति से सुना है तो क्या फल मिलेगा, खुश हो जाएंगे आप। चेतन्य रे जन्म यात्रा फागुनी पूर्णिमा ब्रह्मा आदि तिथि करे आराधना। जो आगे फागुन पूर्णिमा आने वाली है ये ऐसी तिथि है जिसकी ब्रह्मा आदि देव भी आराधना करते हैं। परम पवित्र तिथि भक्त स्वरूपणी यही आवतीना है लेना द्विजमणी। ये जो परम पवित्र तिथि है स्वयं भक्ति स्वरूपणी है। और क्यों भक्ति स्वरूपणी है, क्योंकि स्वयं द्विजमणि जो द्विजों के मणि है चैतन्य महाप्रभु वो इस पे अवतीर हुए। सर्व यात्रा मंगल ए दुई पुण्य तिथि सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है। जो ये दो पुण्यतिथि है, कौन दूसरी पुण्यतिथि कौन सी होगी, पहली तो गौर पूर्णिमा और दूसरी नित्यानंद त्रयोदशी। ये जो तिथियां हैं दोनों सर्व शुभ लग्न बहुत ही शुभ तिथियां हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, गौर चंद्र आविर्भाव सुने ये जाने काबो दुख नहीं तार जना मेवा मरने। जो गौर आविर्भाव के को सुनता है वो क्या होगा, कभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा। हरिवो। और इसके बाद ये बताया सर्व यात्रा मंगल यही दो पुण्यतिथि सर्व शुभ लग्न अधिष्ठान है इति। जो इन दो तिथियों को बहुत अच्छे ढंग से इसका सेवन करता है नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा को, तो उसको भी बताया गया है कि वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उसके सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं। तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज जी अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि ब्रह्म पुराण में भी ये लिखा गया है कि भगवान के आविर्भाव की तिथि के दिन जो हम व्रत रखते हैं जो संकल्प लेते हैं इससे हम निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो भगवान के आविर्भाव की तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। बोले इससे मंगल और के कार्य नहीं है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जब हमारा जन्मदिन होते हैं हम तो पार्टी करते हैं, खुद भी पार्टी करते हैं दूसरों को भी खिलाते हैं। आपकी जन्माष्टमी होती है भूखे प्यासे घूमते रहते हो, अरे खुशियाँ मनाओ खाओ पियो क्या है, आज तो ठाकुर जी का जन्मदिन है उनको भी खिलाओ खुद भी खाओ, ये क्या आपका सेलिब्रेशन है, मुँह सूखा हुआ है धूप में घूम रहे हो क्या है, है ना। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान के आविर्भाव को कैसे मनाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए उस दिन, है ना, व्रत लेना चाहिए और उसके बाद फेस्टिवल मनाना चाहिए, फास्टिंग एंड फेस्टिवल। खूब उत्सव मनाएं कि आज भगवान प्रकट हुए, लेकिन हम अपने लिए क्या करें, संकल्प लें। जो ऐसा करता है वो बताया गया है पुराणों में कि वो निश्चित रूप से भगवत प्रेम को प्राप्त करता है, ठीक है। तो आगे आने वाली तिथि है, तो इस प्रकार से भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनकी जन्म कुंडली भी बन जाती है। अब माता पिता का तो आनंद बढ़ता ही जा रहा है, इतना सुंदर बालक और उसको निहारते ही रहते हैं, यहाँ तक कि जो विश्वरूप उनके बड़े भाई हैं वो भी आते हैं और इस छोटे से बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और क्या होता था कि आसपास के सभी सगे संबंधी और पड़ोसी आ जाते थे और निमाई पंडित को, हरे कृष्ण आवाज डिस्टर्बेंस के बारे, हरे कृष्ण आवाज आ रही है पीछे, तो सभी लोग निमाई को घेर के खड़े हो जाते थे और सबके आकर्षण का केंद्र, सबको निमाई अपनी संतानों से ज्यादा प्यार प्रिय प्रिय होते थे। इसलिए सब लोग सुबह सुबह अपने बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के सच्ची माता के आंगन में आ जाते थे और छोटे से बालक को देखते ही रहते थे, देखते थे, उससे इतना प्रेम हो जाता था, उसे कुछ हो ना जाए। कोई देवी रक्षा के मंत्र बोलता था, कोई विष्णु रक्षा के मंत्र बोलता था, कोई सच्ची माता के आंगन की पूरी परिक्रमा करता था, बोले सारी दिशाओं में पूरे बांध के रखता हूँ, कोई उल्टी सीधी चीजें ना आ जाए। तो सारे लोग घेर के खड़े रहते थे, तो निमाई क्या करते थे, निमाई ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। तो सब लोग बोले बच्चा रो रहा है, आप देखिए जो हमें बहुत प्रिय हो और वो रोए तो कैसा लगेगा आपको, बड़े परेशान हो जाएंगे, है ना। माता जी लोग जानते होंगे जब छोटा शिशु रोता है वो तो अपनी तकलीफ बता नहीं सकता कि उसको क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लग रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, कोई कीड़ा काट रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो सब गैस करते हैं, है ना, जो वरिष्ठ महिलाएं होती हैं बताती हैं उल्टा करो, मालिश करो, ये करो, वो करो, कुछ खिलाओ। तो यहाँ महिलाओं ने सब कुछ कर लिया, झुंझुनू दिखाया, संदेश दिखाया, ये किया, वो किया, वो चुप ही नहीं हो रहे। तो किसी ने बोला लगता है कोई ऊपरी शक्ति आ गई है, है ना, भगवान को पकड़ा, हे हरी, सबने बोला हरी, बोला हरी हरी हरी, हरी। तो माताओं ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे हरी हरी बोला, तो क्या हुए, राम विश्वंभर शांत हो गए, शांत ही नहीं मुस्कुराने लगे। सब स्त्रियों को लगा अरे अरे बच्चा भी रो रहा था, इतना सब कुछ करने का प्रयास किया, चुप नहीं हो रहा था, और कैसे चुप हो गया, हरी हरी। उनको मालूम चल गया ये तो रहस्य की बात है, अच्छा तो हरी हरी से ये चुप होता है, ये इसका खिलौना है, अच्छा तो हरी हरी करने लगे। तो इस प्रकार से सब लोग उसको घेर के रखते थे। अब फिर भी घेरे हुए भी हैं और उसमें से कुछ लोग जहां भगवान है, वहां ना कोई शोक है ना कोई भय है, फिर भी इतना प्रेम होता था, कुछ लोग बड़े डरे रहते थे कोई बाहर की शक्तियां ना जाए, इतना सुंदर है कोई भूत पिशाच ना पकड़ ले। तो देवताओं ने सोचा क्या कुछ मजाक करते हैं कैसा, तो देवता घर में आ जाते थे और एक काली छाया आती थी, देखो देखो सब चोर है चोर है ना, उसे बोलते नरसिंगा नरसिंगा क्या हो रहा है, चोर आ गया है ना, कोई बोलता नहीं भूत है ना। तो क्या होता था, सब इधर पकड़ में, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, तो देवता को मौका मिल जाता, तो आता था भगवान को प्रणाम करके फिर चला जाता, अरे जा रहा है पकड़ो पकड़ो। एक ओझा होता था, बोले नरसिंगा नरसिंगा आज तू बच के चला गया, तू नरसिंह भगवान की शक्ति को नहीं जानता। तो सब देवता खड़े होते तो हंसते थे, देखो क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक महीना बीत गया। एक महीने के बाद सच्ची माता उस प्रसूति गृह से बाहर आई। पहले क्या होता था, हर एक घर में एक मैटरनिटी वार्ड होता था, बच्चे वहीं पैदा होते थे, कोई नर्सिंग होम नहीं होता, कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता था, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, घर के अंदर ही संतान की उत्पत्ति होती थी। एक महीना जैसे कहते हैं ना सूतक टाइप, वहां पे उनको रखा गया। फिर बाहर आई गंगा स्नान के लिए, सभी स्त्रियां गई उनके साथ, गंगा स्नान किया। एक साक्षी देवी का मंदिर था, वहां गए। साक्षी देवी का मंदिर वहां लोकल मंदिर होता है, जैसे वहां कहा जाता प्रथा थी, कोई वहां जाएगा बच्चे को लेके तो कम से कम उसकी बच्चे की आयु 60 साल तो हो ही जाएगी, इसलिए वो जाते थे। और फिर वापिस आई, सभी स्त्रियों को बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने उपहार दिए, सिंदूर दिया, गरी दी, चावल दिए, सब बांट दिए। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रसन्न होते थे। और फिर जब वापिस, अब तो सभी की सभी स्त्रियों का ये डेली शेड्यूल बन गया, सुबह सुबह वो आ जाते थे निमाई के पास, और निमाई सुबह सुबह क्या कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे। तो सुबह से रोना शुरू कर देते तो माताएं क्या करती थी, इससे वो चुप नहीं होंगे, कैसे बोलेंगे, हाँ हरी हरी बोलते, वो चुप हो जाते थे। फिर माताओं ने समझा, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, कि हमारा बच्चा ये चाहता है तो इसके रोने पे ही हम हरी हरी क्यों करें, वैसे हमेशा क्यों ना हरी हरी करते रहे। तो सब लोग फिर क्या करने लगे, ताली बजा कर हरी हरी करने लगे, हरी 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 हरी। हरे कृष्णा, तो पूरा वैकुंठ धाम हो गया। जे दिन गृह थे भजन ने देखी ग्रह तक गोलोक भाए, तो हरी हरी हो गया, माताओं को भी आनंद लगा। तो इस तरह से होते होते विश्वंभर 4 महीने के हो गए। तो एक बारी उनके कक्ष में कोई भी नहीं था, तो भगवान ने क्या किया, उस कमरे में जितना भी सामान पड़ा था सब उल्टा पुल्टा कर दिया। भगवान इतने उदंड शिरोमणि, सारे चावल बिखेर दिए, दाल बिखेर दी, तेल घी दूध दही सब कर दिया, और इतना जोर से शोर आया, उनको लगा अब माँ आने वाली है, तो दोबारा से जोर जोर से रोने लगे। तो माँ ने कहा पहले तो उठा लिया, हरी हरी बोल के उठा लेते, ये सब क्या हो गया, सारी की सारे स्त्रियाँ इकट्ठी हो गई, अरे क्या हो गया ये तो, अरे सारी दाल बिखरी हुई, चावल बिखरे हुए, तेल गिरा हुआ, दूध मक्खन सब उफ, तो क्या हो गया। सबने सोचा ये तो कोई असुर आया होगा और असुर ने इस बालक पे आक्रमण करने का प्रयास किया होगा, ये तो हमने भगवान के मंत्रों से रक्षा की हुई है इसकी, तो इसकी रक्षा हो गई, और गुस्से में आके जब कुछ कर नहीं पाया तो ये सब करके चला गया। जगन्नाथ मिश्र भी आए, बड़े विस्मित थे, क्या है कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही विश्वंभर की सुंदरता को देखा उनकी सारी चिंता दूर हो गई। अगर किसी साधारण घर में ये हो तो बेचारा माथा पकड़ के बैठ जाएगा, इतना नुकसान हो गया है ना। और जगन्नाथ मिश्र बहुत धनी नहीं थे, उनको बताया गया बड़े दरिद्र थे वो, तो सारा सामान उल्टा दिया, लेकिन बच्चे को सुंदर चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, गौरांग तो मुस्कुरा रहे थे, तो फिर बड़े उनके सारे के सारे कष्ट दूर हो गए। तो जब 4 महीने हो गए तो अब उत्सव आता है नामकरण का, तो नामकरण करने के लिए नीलामर चक्रवर्ती आए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए और सभी स्त्रियां सज धज के आई। तो जैसे कि नामकरण में होता है, स्त्रियां बोले लगे ये नाम रखना है, पुरुष बोले नहीं ये नाम नहीं रखना, ये नाम रखना है। तो फिर स्त्रियों ने कहा देख सच्ची देवी, तुम्हारी पहली 8 लड़कियां हुई थी और 8 की 8 मर गई, तो ये इसका जीवन लंबा हो, ये नाम मरे तो इसका नाम क्या रखेंगे, निमाय, निमाय जो कि ना मरे। दूसरा कारण ये है कि जो नीम के पेड़ के नीचे जिनका प्रकट्य हुआ उनका नाम पड़ा निमाय। तो पुरुष जो थे विद्वान नीलंबर चक्रवर्ती, उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला जब से ये बालक प्रकट हुआ है तब से आसपास के क्षेत्रों में जो भी अकाल था वो दूर हो गया और किसान लोगों को बहुत वर्षा प्राप्त हुई। तो भक्ति सिद्धांत सोटा कुमार जी लिखते हैं कि जैसे कि भक्ति रूपी बादलों से प्रेम की वर्षा हो रही हो, और वो प्रेम की जो वर्षा किस खेत पे गिर रही है, इस बद जीव के संतप्त हृदय पे गिर रही है और भक्ति अंकुरित हो रही है, ऐसा है। तो बोले जिस प्रकार से नारायण ने पूरी पृथ्वी को उठाकर वराह रूप में पृथ्वी का पालन किया, और इस बालक ने भी अपने ये सब जगह सारा अकाल दूर हुआ और इस सबका पालन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखना चाहिए, विश्वंभर। और इसकी जन्म कुंडली में भी यही नाम आया है तो इसका नाम क्या रखा गया, विश्वंभर। तो ये निर्धारित हुआ कि विश्वंभर इनका मुख्य नाम होगा और निमाई इनका गॉड नाम होगा। तो इस प्रकार से अब निमाई को सब लोग विश्वंभर को बोलने लगे, हाँ मेरा नाम विश्वंभर है, गोद में उठा के घूमने लगे सब। जब गोद में उठाया, जब कोई गोद में उठाता था उसकी इच्छा ही नहीं होती थी वापिस रखे, तो विश्वंभर फिर लीला करते थे, जब गोद में होते थे फिर रोना शुरू कर देते थे। तब तो स्त्रियों को मालूम है क्या करना है, सब क्या करती थी घेर के, हरि 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 हरि। अब तो विश्वंभर क्या करते थे, केवल हंसते ही नहीं थे, मुस्कुराते ही नहीं थे, गोद में पड़े पड़े नाचना शुरू कर दिया। तो स्त्रियों को बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से निमाई और थोड़े बड़े होते हो गए, संकीर्तन चलता गया, प्रतिदिन संकीर्तन होता था, स्त्री आ जाती थी गोद में उठाती थी और निमाई के साथ संकीर्तन करती थी। फिर निमाई इतने बड़े हो गए कि अब घुटने के बल चलने लगे। जब घुटने के बल चलते थे, अब बच्चा आप जानते हैं एक नई चीज़ सीखा है वो, तो कभी कहाँ कभी कहाँ, और जैसे कि बच्चा हर जगह हाथ डाल देता है, निमाई भी ऐसा करते थे, कभी आग को पकड़ रहे हैं, कभी कोई रेंगने वाले जीव को पकड़ रहे हैं, सांप को पकड़ रहे हैं, सब बड़े निमाई क्या कर रहे हो। और एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सांप सच्ची माता के आंगन में आया, इतना बड़ा सांप था, उसने पहले कुंडली लगाई, निमाई उनके पास गए और चुपचाप उस सांप के ऊपर बैठ गए। तभी कोई आया, बोले निमाई सांप के ऊपर, अरे निमाई निमाई सांप, सब इकट्ठे हो गए, और आप देखो आपके घर में इतना बड़ा सांप हो, हम शहरों में तो सांप देखते नहीं, कभी कभी यहाँ सांप दिख जाता है, सांप हो और सांप के ऊपर कोई आपका सबसे प्रिय बालक उस बड़े सांप के ऊपर बैठा हो, क्या हालत होगी। सच्ची माता जगरा मिश तो कांपने लगे, रोने लगे, अरे निमाई सब बुलाने लगे, गरुड़ गरुड़ जी, गरुड़ जी, गरुड़ जी। उन्होंने सोचा गरुड़ जी का नाम लेंगे तो सांप भाग जाएगा, लेकिन वो सांप कोई साधारण सांप नहीं थे, वो कौन थे? स्वयं अनंत शेष। उन्होंने बोला अरे मेरे स्वामी के भक्त कष्ट में है, ऐसा क्या आनंद लेना, वो तो भगवान की सेवा करने आए थे। वो चुपचाप खिसक गए, वो निकल रहे थे तो निमाई फिर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन गए ऊपर उठा के लाए सब और उसको चूमा, निपटा रहे क्या बच्चा बच गया, आज तो भगवान ने बचा लिया इसको, देखो वो देखो सांप कितना विशेष था, इसको काटा नहीं। और निमाई बड़े हंस रहे थे, निमाई फिर जा रहे थे उस सांप की तरह, अरे रोक के रखा। तो इस प्रकार से ये लीला होती है। और इसके बारे में इस सांप के बारे में भी लीला का श्रुति फल बताया गया है कि जो इस सांप की लीला को सुनेगा, आपको सुनाते हैं क्या श्रुति फल है इसका। भक्ति करी यही सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। जो भी इस गोप्य विषय को सुनता है भक्ति के साथ, उसको दोबारा इस भौतिक अस्तित्व का सांप नहीं काटेगा। और इसकी टीका में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर लिख रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व का सांप क्या है, हमारी भोगने की प्रवृत्ति। जब हम अपने आप को कृष्ण दास नहीं समझते, अपने आप को भोक्ता समझते हैं, वो इस संसार में भोग करने का प्रयास करते हैं, तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर कोई भक्ति से बार बार इस लीला को सुनेगा तो क्या होगा, वो इस भौतिक अस्तित्व के सर के कटने से बच जाएगा। निमाई महाप्रभु की। तो इसके बाद भगवान जब घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, ये थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं उनकी सुंदरता भी साथ साथ और निखर के आती है, और अब भगवान चलना शुरू कर देते हैं। तो बताया गया तो कितनी सुंदरता थी उनकी, सहज अरुण गौर देहा मनोहार, विशेष अंगुली कर चरण सुंदर। उनका जो देह था ऐसे था जैसे निकलते हुए सूरज के समान, और उनकी उंगलियां, उनके हाथ, एक चरण इतने सुंदर थे, बिल्कुल लाल, और उनके अधर भी लाल, और उनकी छाती चौड़ी, घुंघराले बाल। बालक स्वभावे प्रभु यवि चली जाए, रक्त पड़े हे न देखी माया त्रास पाए। उनके चरण इतने लाल थे, जब वो चलते थे तो उनकी माता को लगता था अरे पाम से खून निकल रहा है क्या, इतने लाल। देखी सचे जगन्नाथ बड़े विस्मय, निर्धन तथापि दोहे महानंद। अपने इस बालक की सुंदरता को देखकर बड़े विस्मित हो गए। और वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं हालांकि दोनों निर्धन थे लेकिन हमेशा महाआनंदित। बहुत सुंदर संदेश मिलता है, इस संसार के धन से आनंद नहीं मिल सकता, भगवान के प्रेम में ही आनंद है। हालांकि वो निर्धन थे लेकिन अपने बालक की बढ़ती हुई सुंदरता को देखकर बड़े विस्मित होते थे, और विस्मित होकर क्या करते थे, काना कानी कर दोहे निर्जन बसिया, कौन महापुरुष वा जन्म तलासिया। आपस में काना कानी करते थे, काना फूसी करते थे, क्या है, कौन है ये बच्चा है, कोई महापुरुष तो नहीं है, इसके लक्षण तो साधारण बालक जैसे है ही नहीं, कितना सुंदर है, कैसे पांव है, कैसे अंग है, और ऐसा कोई बालक देखा है आपने जो हमेशा ही संकीर्तन करता हो। क्या होता था, इतना संकीर्तन करते थे तो आप वो चलना शुरू हो गए तो कार्यक्रम तो वही चल रहा है, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम तो वही होता था, सभी के सभी माता जी आ जाती थी और वो क्या करते थे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल।
क्या होता था,
गौरांग महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते थे, इतने प्रसन्न होते थे कि नाचना शुरू कर देते थे। अब तो वो नाच रहे हैं, जैसे आपने चित्र देखा था ना, ऐसे सब स्त्रियां ताली बजा रही हैं। हाँ, पहला जो हमारा पीछे बैकग्राउंड में देख रही है, बैकग्राउंड में है इसके, गौरांग महाप्रभु नाच रहे हैं। अब गौरांग महाप्रभु नाच रहे हैं तो स्त्रियां और आनंदित हो रही हैं। जब स्त्रियां और आनंदित हो रही हैं, उनके कीर्तन का उत्साह और बढ़ रहा है। तो और उत्साह से कीजिए, हरि बोल हरि बोल। ऐसा होता था तो गौरांग महाप्रभु और प्रसन्न हो जाते थे, इतने प्रसन्न हो जाते थे कि गौरांग महाप्रभु की एक्सटेसी इतनी बढ़ जाती थी कि महाप्रभु जमीन पे लौटना शुरू कर देते थे। और जमीन पे जब लौटते थे तो उनका जो सुनहरा देह था धूली धूली हो जाता था, और फिर उठते थे और शर्मा के फिर माँ की गोद में कूद जाते थे और फिर नीचे आते थे। अब ये सब देख कर स्त्रियों को और आनंद आता है, क्या है बच्चा है, क्या कर रहा है, नाच रहा है, जमीन पे लौट रहा है। वो बड़ी प्रफुल्लित होकर फिर बोलती थी, हरि बोल 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 हरि बोल। अब तो गौरांग महाप्रभु का इतने आनंद में आ गए, और वो इतने चंचल थे, अब तो घर से बाहर चले गए। अब घर से बाहर चले गए तो घर के बाहर जब गए तो वहां पे कहीं केले बेचने वाला, कोई संदेश बेचने वाला, कोई नारियल बेचने वाला, उनके पास गए। वो आनंद में है, इतने सुंदर, तो वो उनकी सुंदरता से इतने प्रभावित हो जाते थे और गौरांग महाप्रभु मांगते थे, दे दो। कोई उनको संदेश दे रहा है, कोई नारियल दे रहा है, कोई केले दे रहा है, और अपने छोटे छोटे हाथों में सब लेकर आते थे। और जब लेके आते थे जो स्त्रियां कीर्तन कर रही हैं सबको बांट देते थे, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो जब स्त्रियां देखती थी, हरे राम क्या बालक है क्या बुद्धि है इसके अंदर, किसने इसको बोला, बाहर गया और सबको बांट दिया। तो बहुत सुंदर संदेश इससे मिलता है। क्या संदेश मिलता है इससे हमें, कि जब हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं तो गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते हैं तो फिर अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये जो लोग भगवान के इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हैं, चैंटिंग डांसिंग में लिप्त हैं, तो फीस्टिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों ने नहीं मांगा कि फीस्टिंग दीजिए, प्रसाद कब मिलेगा, अपने आप गौरांग महाप्रभु जा रहे हैं और प्रसाद लेके आ रहे हैं, है ना, वंडरफुल। तो और कई बार उल्टा भी देखा है, कई लोग खाली फीस्टिंग में होते हैं और कोई फीस्टिंग में भी है, कभी महाप्रभु क्या करते हैं उसे फिर चैंटिंग डांसिंग करवा लेते हैं। तो इसमें कुछ घटनाएं याद आ रही थी अभी, पीछे वंशीवर्धन प्रभु आए थे तो वो शेयर कर रहे थे कि कैसे जीवन के हर परिस्थिति में अगर भक्त चैंटिंग डांसिंग करता रहे तो भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, है ना। तो बता रहे थे कि अभी राधा रास बिहारी मंदिर के 40वीं वर्षगांठ थी और वहाँ श्रील प्रभुपाद की, तो वहाँ पे बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्यगण आए और इस्कॉन चूहू में क्या क्या घटा उसके ऊपर उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो उसमें एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं महाबुद्धि प्रभु, तो एक बहुत ही रोमांचक अनुभव वो शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अर्ली 80s में प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद एक बहुत ही जबरदस्त घटना घटी जुहू मंदिर में, कि एक बार ये जुहू मंदिर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत बड़ा रिच व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए, अपने जूते उसने बाहर उतारे और दर्शन करने चला गया। तभी एक वहाँ पे एक जूता चोर आ गया, उसने वही जूते उठा लिए और वो भाग रहा था, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया फॉर अ चेंज। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, उसको पकड़ा, वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, क्या करना चाहिए इसका, इतने महंगे जूते लेके जा रहा है।
उसने बोला ऐसा करते हैं जो मालिक बाहर निकलेगा उसी से पूछेंगे क्या करना चाहिए इसका। कुछ समय के बाद दर्शन करने के बाद वो व्यक्ति बाहर आया तो बोला देखो जी ऐसे ऐसे हो गया, ये व्यक्ति आपके जूते चुरा रहा था। बोले अच्छा जूते चुरा रहा था, तो बोले क्या करना चाहिए इसके साथ, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे जिससे आपकी संतुष्टि हो। तो मैं बोला इसके तो गले में जूतों का हार डालना चाहिए और पूरे शहर में घुमाना चाहिए। बोले ठीक है जी यही करेंगे। तो पुरानी चपने जूते पड़ी थी उसका कुछ हाथ से हार पहना दिया, जल्दी से उसको डाल दिया। अब उसके साथियों को आसपास के कॉलोनी में रहते थे सबको खबर मिल गई, सब वहाँ इकट्ठे हो गए और बड़ा शोर शराबा मच गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। महाबुद्धि प्रभु उस समय जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। महाबुद्धि प्रभु उस समय टेंपल मैनेजर होते थे, तो बोला बाहर शोर शराबा क्यों मच रहे। वो आए तो देखा से झगड़ा वगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने चौकीदार को बोला और व्यक्ति बोला चलो मेरे साथ चलो अंदर बैठ के बात करेंगे, झगड़े में तो कुछ सुलझना था नहीं। तो वो आगे आगे चल रहे थे, पीछे वो सोच रहे थे क्योंकि पीछे लोग आएंगे, तभी उनको जोर से एक आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ आई जैसे कि नारियल फट गया हो, बस नारियल गिरा हो। और पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में एक लोहे की छड़ी है और वो जो व्यक्ति था चोर था उसकी पूरी खोपड़ी तोड़ दी, टूट गई। इतनी जोर से आवाज़ आई, हुआ क्या कि वो जो उसके साथी आए थे वो सिक्योरिटी गार्ड पे आक्रमण कर रहे थे अपने बचाव में, इसके ऊपर आक्रमण हो गया और इसका तो वहीं मर गया वो। अब तो बहुत शोर मच गया वहाँ पे, गड़बड़ हो गई, पुलिस आ गई और पुलिस महाबुद्धि प्रभु को और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के ले गई अंदर। और तभी ये जो लोग थे इनकी कोई जान पहचान थी, वही व्यक्ति थे मिस्टर महापात्र जो कि मिस्टर एन के बड़े नज़दीकी थे। तो उन्होंने बोला ये अब अच्छा मौका है, स्वामी जी चले गए हैं, ये विदेशी लोग हैं, अब ये दोबारा से ज़मीन हम हथिया सकते हैं। उसे खूब पॉलिटिकल प्रेशर डालवा के पुलिस पे प्रेशर डाला, पुलिस आई, जितने भी वरिष्ठ मैनेजर थे सबका बोला चलो आपसे कुछ आपकी स्टेटमेंट देनी है, जेल चलो। तो 15 से 20 जो भक्त थे उनको जेल में लग गई सर। बोले अभी आपकी स्टेटमेंट नोट करते हैं, स्टेटमेंट नोट करने में चक्कर में क्या उनको वहीं बंद कर दिया। अच्छा बंद कर दिया तो महाबुद्धि प्रभु बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया उनको मालूम था कि सब लोग आएंगे पीछे से पुलिस कुछ करेगी, वो जो सेल उन्होंने खाली करवा लिया था, एक ही सेल में सारे भक्त लोग इकट्ठे हो गए। तो क्या किया बाय चांस उसमें श्रीधर स्वामी महाराज भी थे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको जॉली स्वामी बोला जाता था, बहुत प्रसन्न रहते थे हर अवस्था में और अभी तो उनका तिरोभाव हो गया। तो उन्होंने देखा अचानक उस जेल की दीवार पे ना एक ऐसे एक छोटा सा कागज़ लटका हुआ था और उस कागज़ पे लिखा था कीर्तन सागर। उनको हिंदी में पढ़ना नहीं आता था लेकिन एक भक्त अमोग लीला उस समय की उन्होंने हिंदुस्तान वाले अम्बोग ही लिखा है कीर्तन सागर। अरे वाह बहुत अप्रोप्रिएट नाम है, तो कीर्तन ही करना चाहिए। तो भक्तों ने वहाँ कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो कीर्तन शुरू कर दिया तो कीर्तन हो रहा है, आरती का समय हो गया। बोले ठीक है, भक्त लोग ऐसे मानसिक रूप से किसी ने शंख बजाया किसी ने अगरबत्ती दिखाना से शुरू किया पूरी आरती की, और फिर आरती की प्लेट ले जा रहे हैं सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है। और जो पुलिस वाले हैं उसको भी दिखा रहे हैं वो भी ऐसे करने लगे, तो ऐसे ही चल रहा है। फिर आरती के कुछ आरती कर रहे हैं, कोई नाच रहा है कोई कीर्तन कर रहा है, तो पुलिस वाले बड़े परेशान। उसके बाद बोला टाइम वाले सब जेल वालों के लिए वो आ गया, वहाँ खाना बांटते हैं। बोले हम तो खाना खाएंगे नहीं। बोले क्या खाओगे? बोले हम तो ये खाते नहीं तो प्रसाद लेते हैं। बोले यही मिले? बोले हम तो लेंगे ही नहीं। पुलिस वालों को डर हो गया, वैसे विदेशी लोग हैं और कुछ खाने को नहीं दिया, कुछ गड़बड़ हो गई। बोले ठीक है इनके लिए प्रसाद अलाउ कर देते हैं। तो 15-20 लोगों के लिए प्रसाद आना शुरू हो गया मंदिर से। अब रोज का ये रूटीन बन गया, रोज़ सुबह मंगल आरती होती थी, ऐसे ही करके करते थे, ऐसे ही सब करते थे। और वो इतना बन गया कि अब पुलिस वाले भी अगर उस कमरे में आ रहे हैं सेल में, जूते बाहर उतार के आते थे ये सोचिए। और रोज हो रहा, उनको 15 दिन तक हिरासत में रखा गया, 15 दिन हिरासत में रोज ऐसे ही हो रहा है। टाइम पे आरती हो रही है, टाइम पे भागवतम क्लास हो रही है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, कीर्तन सागर है। और सारे पुलिस वाले, अब जब प्रसाद था पहले 15-20 लोगों के लिए आता था, थोड़ा बच जाता था प्रसाद, तो अक्सर ऐसे ही होता है कुछ बचता ही है तो आसपास के लोगों को खिला दिया। बोले यार थोड़ा और मंगवा लो फिर। तो सारे जेल में अब प्रसाद बटने लगा, पुलिस वाले भी प्रसाद पा रहे हैं, सब प्रसाद पा रहे हैं, लग नहीं रहा ये जेल में, लगता है पूरे मंदिर में। देखिए कैसे हुआ, इस परिस्थिति में भी उन्होंने क्या किया, कीर्तन किया, भगवान की शरण ली, है ना। तो जीवन में कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना। हम लोग क्या करते हैं, जीवन में कुछ भी हो जाए सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, बोलते पहले इसको एडजस्ट करूं फिर इसको करूंगा। लेकिन भक्तों पे इतना संकट आया, उन्होंने क्या किया, किसकी शरण ली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ, 15 दिन के बाद भक्त वापस आ गए, महाबुद्धि प्रभु उस गार्ड को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। अब सेंट्रल जेल में महाबुद्धि, उनके ऊपर केस चलता रहा, महाबुद्धि प्रभु 1 साल तक रहे। वो थे अमेरिकन, एक गार्ड था बंगाली, तो फिर वो कहते वही रूटीन फॉलो कर दिया, सेंट्रल जेल में भी यही शुरू कर दिया, वहां सक्सेस मिल गई उनको, पिछले जेल में वही करते थे, ऐसे आरती करते थे, सब आरती लेते थे और कीर्तन करते थे और प्रसाद, मतलब प्रसाद तो पाएंगे हम, तो प्रसाद ही पाएंगे फिर, और फिर मंदिर से प्रसाद आता था। अब 2 लोगों के लिए प्रसाद क्या आएगा, कुछ और के लिए भी आने लगा, बाकी जो जेल के साथी थे उनको भी प्रसाद मिलने लगा, वो भी कीर्तन में भाग लेने लगे। और महाबुद्धि प्रभु रोज भागवतम क्लास देते थे जेल में बैठ के, अब भागवतम क्लास दे रहे हैं इंग्लिश में भागवतम क्लास दे रहे हैं, अब उसको ज्यादातर कैदी जानते हैं हिंदी, और ट्रांसलेटर कौन था, बंगाली, तो उसको इंग्लिश आती नहीं थी, और थोड़ी बहुत रह के जो सीख गया था तो पता नहीं क्या ट्रांसलेट करता होगा, वो ट्रांसलेट करता था, बाकी लोग सुनते थे, उसी में उनका शुद्धिकरण हो गया। और ये चलते 1 साल ऐसे निकाल दिया महादेव ने, उसके बाद ये तो वापस चले गए मंदिर। और ये जो गार्ड था इसकी थी लंबी सजा, अब बोला ये चले गए, लेकिन प्रोग्राम कंटिन्यू रखा गार्ड ने, अब गार्ड क्लास देने लगा। तो ये है संकीर्तन आंदोलन। तो जब ये सुना, सो मच फेथ गिविंग, इतना इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है कि इस हरिनाम में इतनी शक्ति है ना, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने क्या किया, हरिनाम की शरण दी। तो महाप्रभु क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, तो सब स्त्रियों ने मिलकर गौरांग महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया, महाप्रभु एक्सटेसी में आ गए, लौट रहे हैं जमीन पे, और उन सबको वो रेसिप्रोकेट क्या कर रहे हैं, सबको संदेश बांट रहे हैं, नारियल बांट रहे हैं, केला बांट रहे हैं, हैं? तो चाहिए ये गाते हैं, बहुत सुंदर ये भजन है, सुंदर लाला शचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, बाले चंदन तिलक मनोहर अलक शोभे कपोलन में, शिरे चूड़ा दारा श्री बाले वन फूल माला हिया पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे नुपुर रणो झुनो चरणों में, सुंदर बाला शचिर दुलाला नाचत से हरि कीर्तन में, राधा कृष्ण एक तनु है निधुवन माझे बंशी बजाए विश्वरूप के प्रभु जी साहि आओ त प्रकट ही नदिया में कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण नाम मंगल तानम मृदंग रसाल बाजत है कोई रंगन में सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में।
तो इस प्रकार से सची माता के आंगन में रोज संकीर्तन होता था और अब क्योंकि निमाई पंडित ने निमाई गौरांग महाप्रभु ने चलना शुरू कर दिया और जब बच्चे चलते हैं तो आप जानते हैं कहीं भी बाहर निकल जाएंगे और क्या करते थे गौरांग महाप्रभु पड़ोसियों के घर में चले जाते थे और पड़ोसियों के घर में जाकर क्या करते थे चोरी करते थे जो भी चावल मिला मोड़ी मिल गया खा गए दूध संदेश खा गए कुछ नहीं मिला तो बर्तन तोड़ के आ गए और कुछ नहीं अगर पसंद नहीं आया तो वहाँ के जो बच्चे सो रहे थे उनको रुला के आ जाते थे बड़े परेशान होते थे और कोई पकड़ने भागता था तो जोर से भाग जाते थे और कोई बाई चांस पकड़ लेता था तो एक दिन अपने रंग बदल देते थे उसके पाँव में पड़े आते थे माफ़ी मांगते थे रो रो कर बस कृपया करके मुझे क्षमा कर दो क्षमा कर दो। उनका हृदय इतना पिघल जाता है बाला के क्या है इतना चंचल और ऐसे माफ़ी मांग रहा है लेकिन सबके हृदय में इतना प्रेम होता था उनको बुरा नहीं लगता था उनको बहुत आनंद आता था। कोई हमारे घर में आए हमारे फ्रिज से कोई सामान निकाल के भाग जाए कैसा लगेगा हमारे घर का सामान तोड़ के चला जाए तो बहुत गुस्सा करेंगे पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं किसी के बच्चे को हम थप्पड़ मार के आ जाए तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे लेकिन उनको बहुत प्रेम आता था। तो इस प्रकार से खूब चले जाते थे रात हो दिन हो दोपहर हो कहीं भी निकल जाते थे। तो एक बारी सच्ची माता ने इनको बहुत सजाया सुंदर सुंदर आभूषण डाले नूपुर डाले कंगन डाले बाजू बंद कमर बंद और निमाई निकल गए घूमने मार्केट में चले गए गंगा के तट पे जाते जाते मार्केट में चले गए वहाँ पे दो चोर थे उन्होंने बोले वाह आज तो बहुत बढ़िया है ये बालक अकेला घूम रहा है चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। दो दो चोर मुस्कुराते हुए बालक के बोले अरे बेटा कैसे हो कहाँ क्या घूम रहे हो चलो घर चलो। आप निमाई तो अंतर्यामी हैं बोले हाँ हाँ चलो घर चलो तो बड़े खुश हो गए तो उसको उठा लिया गोद में ओ शाबाश चलो शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इतनी भीड़ भाड़ थी लाखों लोग हैं किसी को लगा ही नहीं शक भी नहीं हुआ कि इनका बेटा नहीं है इतने प्रेम से और निमाई शोर भी नहीं मचा रहे थे कोई कोई पराया व्यक्ति है उसके साथ वो बच्चा जाएगा नहीं बड़े खुशी खुशी जा रहे थे उन्हें बस चलो चलो उन्होंने क्या किया अपने कंधे में बिठा लिया। उनको लग रहा है आज तो ये बच्चा कमाल का है इतने गहने डाले हुए और रो भी नहीं रहा और कोई पकड़ भी नहीं रहा है तो आनंद आ गया और दोनों ही दोनों मन से एकदम ख्याली पुलाव बनाने लगे। एक सोचा था मैं कंगन ले लूँगा एक सोचा था मैं नूपुर लूँगा एक सोचा था मैं बाजू बंद ले लूँगा एक सोचा था कमर बंद लूँगा अरे आनंद आ गया और तेज़ी से भाग रहे थे बस बेटा पहुँचने वाले हैं और एक उसको संदेश खिला रहा है, माई संदेश दे रहा है, वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो कमाल हो गया। अरे उनका तो हृदय में लड्डू फूट रहे हैं कि बस बस बेटा पहुंचने वाले हैं, पहुंचने निमाई करें, ठीक है चलो, कंधे में बैठ के फरीका उनको झूले मिल रहे हैं, चल रहे हैं और वो दूर ले आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कहीं दूर ले जाएंगे और फिर सारे के सारे गहने हर लेंगे। वो तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता ढूंढ रहे हैं, निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ है, विश्वम्भर निमाई, विश्वम्भर निमाई, कहीं दिख रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे उनका जीवन चला गया हो, इतना प्रेम करते थे विश्वनाथ वृंदावन दास ठाकुर जी, दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है उनको जैसे मछली जल से बाहर आ गई हो और जोर जोर से वो पुकारे थे निमाई, नहीं ऐसे नहीं, एकदम हृदय से रो रो कर, आपका प्रिय बालक चला गया घर से, मिल नहीं रहा, कैसे पुकारेंगे निमाई, निमाई। भगवान अंतर्यामी है, उनके देखा कि उनके माता पिता को इतना दुख हो रहा है, सारे उनके पड़ोसी दुखी हो गए, तो भगवान ने अपनी माया शक्ति ऐसे की, उन चोरों को ऐसे घुमाया, वो भाग भाग के आए, उनको लगा अपने घर में पहुंच गए, नहीं कहाँ पहुंचे वो, जगन्नाथ मिश्र के घर के सामने, बोले बेटा घर आ गया, बोले हाँ घर आ गया, नीचे उतारो, आप नीचे उतारो, जल्दी उतारो, और जैसे नीचे उतारा वो तो चोर तो बड़े उत्सुक थे, आप सारा लूट लेंगे, निमाई भाग के चले गए, और वहाँ जगन्नाथ मिश्र ऐसे बैठे थे सर पे हाथ रख के, तो बिल्कुल उनके गोद में चले गए, और कौन है जगन्नाथ मिश्र, वापस आ गया, जैसे उनका जीवन वापस आ गया, तो ऐसे गले लगा लिया और सब लोग क्या बोले, हरी 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 हरी, जोर से खुश हो गए। चोरों को लगा ये क्या हो गया, अरे बालक तो वहाँ चला गया, ये तो उसका ही घर आ गया, अरे भैया तो पकड़ लेंगे, वो डर के भागे, बड़ी जोर से भागे, जब भागे तो एक दूसरे से बोलने लगे, हुआ क्या, हम तो अपने घर पे ला रहे थे। किसी ने बोला भैया लगता है कोई जादू टूना हो गया, दूसरा बोलता है ये तो हमारी चंडी देवी थी जिसने रक्षा कर ली, तो आज तो फंस जाते, हम तो बड़े सौभाग्यशाली, खूब पिटाई होती, दोनों एक दूसरे को गले लगाने लगे, भैया बच गए आज तो। और वहाँ पे सब लोग बोले अरे कैसे, तू कहाँ चला गया निमाई, फिर बोला अरे कौन लेके आया इसको, कौन लेके आया, देखा कोई है नहीं, इसने बोला दो लोग आए थे, दो लोग तो थे, पता नहीं कहाँ गए, कौन था निमाई, कौन लेके आया तेरे को, बोले हाँ क्या हुआ, बोले मैं तो सिर्फ घूमते घूमते गंगा के तट पे चला गया, रास्ता भूल गया, दो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने उठा के लाए, मुझे संदेश भी खिलाया, यहाँ यहीं कहीं होंगे, बोले हाँ देखो देखो, जगन्नाथ मिश्र ने बोला उनके लिए कोई उपहार लेके आओ, तो एक पगड़ी लेके आए, उनको पगड़ी डालेंगे, लेकिन वो चोर पहले ही भाग चुके थे। तो फिर सबने बोला देखो शास्त्रों की बात कभी झूठ नहीं होती, कैसे झूठ नहीं होती, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो असहाय होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, देखो कैसे हमारे बच्चे की रक्षा की भगवान। तो इस प्रकार से ये सब कह रहे थे और निमाई खूब हंस रहे थे। तो विश्वम्भर और निमाई ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं सच्ची माता के आंगन में की, और बताते हैं जो इस आख्यान को सुनेगा उसको क्या प्राप्त होगा। वेद गोप्य एस अब आख्यान ये सुने, तद भक्ति है चैतन्य चरण, कोई ये वेद गोप्य है, ये जो आख्यान कोई सुनेगा चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उसको दृढ़ भक्ति प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, विदाई गोपे वनंदे। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रसन्नता के लिए आपको 10 मिनट पहले छोड़ा जा रहा है। तो आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और हम यही इस महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस श्रवण और कीर्तन की सेवा को वह स्वीकार करें, हमसे प्रसन्न हो और हम पर हमारी कृपा करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गोप प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का किस प्रकार आप धन्यवाद करोगे?
हरी 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 हरी
हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी ह प्रभुजी ने इतने सुंदर तरीके से हम सबको गौर कथा का अमृत का पान कराया। आप सब लगभग ढाई घंटे से बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, आपका भी धन्यवाद और प्रभु जी का खास करके धन्यवाद। तो चैतन्य भागवत जो कि पढ़ने को सुनने को बहुत कम मिलता है, प्रभुजी ने इतना समय निकाल कर हम सबके लिए इस अमृत का पान कराया, तो प्रभुजी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कथा का श्रृंखला जारी रहेगा, कल ठीक 7 बजे से फिर कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्णा। आप सभी के लिए प्रसादम की व्यवस्था है, प्रभु जी के लिए राइट हैंड साइड में, माताओं के लिए पीछे। और कल कुछ भक्तों ने चैतन्य चरितामृत लिया था, 4 भक्तों ने कल चैतन्य चरितामृत ली थी इस ग्रह से राम लक्ष्मण प्रभु जी से। तो आज भी मौका है, आज भी प्रभु जी के हाथों से आज आप चैतन्य चरितामृत ले सकते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं, 100 गुना फल आपको ज़्यादा मिलता है, जैसे कल प्रभु जी बतला रहे थे। तो आदि गुरु निताय प्रभु हैं, आपके फ़ोटो भी खींचेंगे और फोटो नोटिस बोर्ड पे भी लगेगा। आप आ सकते हैं। हरे कृष्णा।